नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोहित वाम भागम् बाणो महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्
भगवान श्री रामचंद्र की लीला भूमि राम ईश्वर जहाँ भगवान स्वयं भक्त की महत्ता को महिमा को प्रतिपादन करने के लिए स्वयं आपने भक्त शिरोमणि भक्त श्रेष्ठ शंकर जी को पूजा आराधना किए थे स्थापना करके इस क्षेत्र जहाँ पर उनके वीरता उनके महत्ता सब कुछ प्रकट हुआ है। आप लोग आज इस नववर्ष का अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष का प्रथम दिन में इस भक्त और भगवान के लीला भूमि में दर्शन किए श्रवण भी करने जाएंगे, सुबह सुबह तीर्थ स्नान भी किए, भगवान रामेश्वर जी का दर्शन किए, धनुषकोटि गए, कुदंड राम मंदिर भी दर्शन किए होंगे, गंधमार्दन पर्वत और छोटे मोटे और इतने दिखे ही होंगे। ये सारे क्षेत्र त्रेता युग के लीला क्षेत्र है। भगवान राम सीता अन्वेषण में आए थे, जब उनको सुग्रीव से मित्रता करने के बाद में बताया था, जो चार ग्रुप वानर सेना के गए थे सीता जी के अन्वेषण में, जिस ग्रुप में जाम्बवान हनुमान आदि थे वो दक्षिण दिशा पर आए थे, असफल हुए थे, वो भी दुख से मारा जाएंगे या स्वयं मर जाए इसी प्रकार खिन्न हृदय में जब जा रहे थे, तो पखिराज संपत्ति का कृपा से उनको सीता जी के खबर मिला, उनके सहायता से सीता जी की एड्रेस पता करके और कंफर्म करने के लिए कौन जाएगा, तो सारे उनके बल की परीक्षा होगा हुआ। जाम्बवान की प्रेरणा से श्री हनुमान जी कटिबद्ध हुए जाने के लिए निकटस्थ महेंद्रगिरी के ऊपर चढ़ करके अपने विशाल रूप को धारण करके जय श्री राम ऐसे उच्चारण करके डायरेक्ट फ्लाइट बुकिंग किए, लंप प्रदान किए बाई एयर, और जो लंका की ओर जा रहे थे भगवान की दूत बन करके सीता अन्वेषण के लिए, तो सबसे पहले रास्ता में उनके बाधा आया, उनके कार्य में एक पर्वत उठकर खड़ा हुआ समुद्र से, जिनका नाम था मैनाक पर्वत, उठकर खड़ा हुआ हनुमान जी की बोला, आपने प्रतिमूर्ति दिखाकर बोला, देखो आप इतने दूर जाएंगे, 800 मील है, 100 योजन है, इतने बड़े भारी रूप तुम्हारा है, इतने हाई लोड लेकर कैसे जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर लो, दोबारा जंप लेना मेरे ऊपर खड़े हो। तो हनुमान जी देखे कि रूप लेकर मेरे सामने खड़ी, तो क्या करें, विशाल पर्वत सामने, बोलते हैं कि मेरे ऊपर अब रेस्ट लो, फिर जाओ, थोड़ा थकान मिटा दो आपका। तो हनुमान जी की तो टाइम नहीं था, भगवान की दूत बन करके अभी समय बीत चुका है, यथाशीघ्र सीता जी के संवाद लाकर देना है भगवान को, लेकिन वो खड़ी रास्ता में दीवार बन करके जाने नहीं देता। मैनाक पर्वत जैसा, ये मैनाक पर्वत आलस्य की प्रतिनिधि कर रहा है। हम जब भगवान के लिए भक्ति कार्य करने के लिए निकलते हैं, सबसे पहले बाधा बनकर कौन खड़ा होता है? आलस्य। ठीक, देख लेंगे, करेंगे, 16 माला 24 घंटा में हो जाएगा, 6 माला और बाकी है, रात को देख लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे, क्या बात है। खाने पीने के मामले में एक घंटा लेट हो गए, तोड़ फोड़ के रख देंगे सब, भजन के काम देखेंगे। ये जो आलस्य विचार, तुरंत भगवत कार्य में, सत कार्य में बहुत आगे आता है, सबसे फास्ट ही आता है। इतने क्यों उम्र करो, इतना हड़बड़ी क्यों? बाकी कार्यों में तो इतने हड़बड़ी मचाएंगे, स्वार्थ सिद्धि जहां होगा। जब भगवत सेवा के लिए, कोई सत्कर्म के लिए ऐसे मैनाक पर्वत रूपी भगवान के दूत श्रेष्ठ भक्त हनुमान को भी पहाड़ बनकर खड़ा हो गया था, ये निश्चित है। हम लोग तो कोई गिनती में नहीं है, हनुमान जैसे भक्त भगवान राम के साक्षात आदेश को लेकर जा रहे थे, उनके सामने आलस्य बन गया। थोड़ा आराम तो कर लो, नहीं क्या है। लेकिन हनुमान जैसे प्रामाणिक भक्त हमको सिखा देते हैं, अगर आलस्य का इस प्रकार भाव आए तो उसको अनर करो। हनुमान जी ने स्पर्श किए और चल दिए, थैंक यू, हो गया बस। तो आलस्य को स्पर्श मात्र करके त्याग करके चले गए। लेकिन इतने में काम नहीं बना, थोड़ी गए कि नहीं, एक और राक्षसी विशाल रूप धारण खड़ा, क्या नाम था उनका? सुरसा। वो तो इतने तेज बढ़कर खड़ी हुई, बोला मुझे ब्रह्मा जी के वचन है, वरदान है, समुद्र पार कर कोई नहीं जा सकते मेरे में खाए बिना, मैं खाऊंगा, हजम करूंगा, डाइजेस्ट करके छोड़ दूंगा, तब कोई जाएगा, ऐसे नहीं जा सकते, नेवर। अरे बोला ब्रह्मा वरदान है, ऐसे कोई नहीं जा सकता। आचार्यगण कहते हैं सुरसा है अहंकार के प्रतिनिधि। आलस्य के बाद दूसरे पड़ाव आता है भक्ति का पथ में, अहंकार। मैं कर लिया तो, मैं तो अभी दिल्ली बंगला में आता हूँ, व्हाट डू थिंक, तू ऐसे आता, मैं तो दिल्ली आता हूँ, कभी मिस ना, 3 में से उठ जाता हूँ, उठते भले 3 बजे, लेकिन आपके अंदर भाव क्या प्रकट हो रहा है? ये जो अहंग भाव बड़ा खतरनाक है। सुरसा राक्षसी क्या की, समुद्र से प्रकट होकर के खड़ी हुई, बोला कि मेरे से ब्रह्मा के वरदान है, मैं खा कर ही छोड़ूंगा तुझे, नहीं जा सकता तूने, रास्ता रोक दिया। हनुमान जी बोले मैया मैं बड़ा हूं, तू खा नहीं सकता मुझे, मैं कितने बड़ा हूं। हनुमान जी अपने विशाल रूप धारण किए, जैसे हनुमान को देखा 500 किलोमीटर का हाइट है, तो आपने मुंह कितना बढ़ा दिया, उनके मैचिंग से और बड़ा, 200-300 माइल के लंबा उनका मुंह फैल गया, इतने विशाल, जितने बड़े हनुमान जात बनते जाए इतने बड़ा उनका मुंह बनता जाए। अहंकार का ही लक्षण है, हमेशा हमारा मन में विचार होगा मैं उनसे बड़ा बनना चाहूंगा, उनसे बेटर बनना चाहूंगा, यही भाव होता ना, उनसे बड़ा और उनसे बेटर, कंपटीशन, इसी के मामले। और कंपटीशन किया उन्होंने, उससे अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, हनुमान जी अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, जो इतने बढ़ा करके हाई साइज कर दिया मुंह को, हनुमान जी तुरंत एक मक्खी बन गए, चट करके बने, उनका अंदर गए और आए, उनके गर्भ तक चले गए, मुख से घुस करके चले गए और निकल के आ गए, उनको पता भी नहीं चला। बोला भैया हो गया ना, आपके मुंह से भी गया, आपके डाइजेस्टिव कैनाल से जा करके आपको चक्कर लगा के फिर आ गया डाइजेस्टिव करके। सुर से हंसने लगे हनुमान की चतुरता देख करके, जान गया तू बड़ा चतुर है, केवल बलवान नहीं है बड़ा बुद्धिमान भी, बहुत चतुर है। चतुराई से अहंकार को जितना होगा, उनके साथ कंपटीशन करने से नहीं करता। कंपटीशन तो अपने आप होता ही है, आप जितने साधन भजन करेंगे इतने अहंकार बढ़ेगा। एक बार जीवन में निर्जला उपवास कर लिया तो पता नहीं कितनी बार लोग मुझे सर्टिफाई करेगा, पता है पूरा निर्जला करता, पूरा कहानी बताएगा, हाँ छोड़ेगा नहीं, लेते होगा दूसरे साल एकादशी तक ही बोलते रहेगा। ऐसे कहावत है सुकर्म सत्कर्म में, अगर आप करते हैं इस हाथ में करो, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया तो सत्कर्म का पुण्य फल वही प्राप्त हो गया और नहीं आगे कुछ मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। किसी ने कुछ दिया, उन ताली बजा दिए, हरे कृष्ण कर दिए, बस वही फल हो गया खत्म, और आगे कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। लेकिन लोगों तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ कितने आशा रख के क्या क्या करते हैं। तो इस चतुराई से सुरसा राक्षस जैसे अहंकार, भगवान गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, फिर अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, सारे काम प्रकृति के द्वारा होता है लेकिन कौन उसको पहचानता है, सब बोलते हैं मैंने की मैंने किया। माताजी लोग होम डिपार्टमेंट वाले हैं, कभी किसका घर में अतिथि बनकर जाओ, अभी दिसंबर जनवरी में गोभी आलू मटर बड़ा सस्ता मिलता बाजार में, अरे सुबह गरम गरम बिल्कुल टम टमाटम फूले हुए पूरी आलू मटर गोभी के सब्जी देंगे, क्या टेस्टी है गर्मा गर्म, और आप खाकर बोले क्या स्वादिष्ट डेलीशियस, माता तुरंत एक बार साड़ी बांध कर आ जाएगी, मैंने बनाई मैंने बनाई, क्या समझे लेकिन मैंने बनाया कैसा है, सीधा तीन चार बार तो बोल ही देंगे, कुछ मैया बुरा ना माने, बात पूछो ना पूछो, ना गोभी आपने बनाई, बाजार से आया था, हलवा आपने बनाया था नहीं, वो भी बाजार से लाए, मटर नहीं, आटा नहीं, पानी नहीं, आग नहीं, चूल्हा नहीं, तो पर क्या किया आपने, पचासों गिनती कर देंगे आप कुछ नहीं किए, क्यों बताया कि हम बनाए, है ना नहीं। तो हम सभी के अंदर सुरसा राक्षस की तरह पहाड़ जैसा फल सिगो बैठा हुआ है, हमारा आत्म बड़ी मां जो अहंकार पर्वत प्रमाण में अंदर और बाहर दोनों चारों ओर फैल कर बैठा है, उसको कैसे ओवरटेक करेंगे, नहीं तो जाने नहीं देंगे। हनुमान जैसे भगवत दूत को छोड़ा नहीं, हम तो कोई गाय के गोबर है क्या है, कैसे जाएं? ये महान भक्ति के प्रतिरोध को बाधा को इस भगवत वाक्य को स्मरण करके, जैसे महाप्रभु की शिक्षा है गोपी भर्तृ पद कमलयोर दास दासान दासः, हमेशा अपने आप को केवल दास दास मान करके ये भावना रखे हम तो भगवान के हाथ में कठपुतली है, किसी के लायक नहीं, हम केवल भगवान के हाथ में एक यंत्र मात्र है, और जैसे हम क्यूज करे कर ले, मेरा तो कुछ मान्यता नहीं कुछ करना है। इसी प्रकार आत्मा गर्भ शून्य अहंकार शून्य हो करके और दासत्व भाव को रख करके जो कुछ करें भगवान कर रहे हैं करा भी रहे हैं, इससे मेरा कुछ क्रेडिट नहीं, जो कुछ मैं कर भी रहा हूँ वो करा रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो मशीन हूँ, मशीन का अपनापन क्या है ना। नहीं, जब प्रद्युम्न मिश्र जी पुरी में रामानंद राय के पास आए कथा सुनने के लिए, महाप्रभु बार बार भेजते थे, वो कुलीन ब्राह्मण थे, पसंद नहीं करते थे, बोले राज कर्मचारी है, शूद्र है, मैं इतने बड़े कुलीन ब्राह्मण हूँ, मिश्र ब्राह्मण हूँ, उनके पास जाऊँगा सुनने के लिए, आप महाप्रभु क्यों भेज रहे हैं उनके पास, मैं नहीं जानता हूँ कुछ, मैं तो मायावादी हूँ, वही सब जानता है, मैं उनसे सिखाऊँ, उनके पास जाइए। दूसरी बार फिर भेजे, पहले दिन तो जो सुनकर आए थे और गंडम हो गए, बोले ये तो ऐसा ही काम करता है यार उनके साथ। महाप्रभु दोबारा भेजे तो रामानंद राय सुने थे कि बड़े पंडित आए थे पुरी के, प्रद्युम्न मिश्र जी, तो दूसरी बार जब आए उनको सेवक बताया कि राय साहब आए, आकर के उनको मिले अपने भवन में, मिलकर के पूछे पंडित जी क्षमा करे काल आकर चले गए, किस लिए आए, क्या कारण है। नारे क्या कहूँ, मैं श्री चैतन्य के पास गया था कुछ कृष्ण कथा सुनने के लिए, वो तो बार बार आपके पास भेज रहे हैं, आप सुना है। बोले कि मेरा नाम बताना हो आपको कृष्ण कथा सुनाए। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु आपके पास भेजे मेरे से सुनने के लिए ना, हाँ ठीक है। तब उन्होंने रामानंद राय का उत्तर था, बोले मैं क्या सुनाऊंगा, सुनाना तो होगा, तो आपको आपको पास भेज रहे ना, इसलिए भेजा। मोरा जिह्वा वीणा यंत्र सही वीणाधारी, वीणा यंत्र समझते जैसे एक हारमोनियम है, वीणा तो आजकल देखे नहीं होंगे, हारमोनियम देखते हैं कि हारमोनियम है, हारमोनियम में बहुत सुंदर सुंदर राग रागिणी ताल स्वर निकल रहा है, हारमोनियम अपने आप बजा सकता है, सुर ताल निकल सकता है, बजाने वाला चाहिए, बजाने वाले अपने हिसाब से जो राग जो ताल जो तान निकाल सकता है इस यंत्र से, वो अपना कुछ नहीं कर सकता, उनके इच्छा से चलेगा, लेकिन उनका इच्छा से यंत्र द्वारा ही निकालेगा। ठीक इसी प्रकार बोलते मेरा जिह्वा है ये तो एक यंत्र मात्र है, वीणा यंत्र है, वो तो वीणाधारी है, उनके इच्छा में जो राग रागिणी निकलेगा वो यंत्र से निकाल लेगा, समझ में आया ना क्या उपमा दी। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को समझेंगे कि हम तो यंत्र मात्र है, भगवान हमसे जो कुछ कराना चाहे करा ले, उनकी मर्जी, इंस्ट्रूमेंट है। भगवान गीता में कहे भी अर्जुन ये बड़बड़ाई मत कर, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, निमित्त मात्र बनो, यही तेरा धर्म है, बाकी कुछ जब निमित्त मानेंगे तो अहंकार कहाँ क्या आएगा, अहंकार आ ही नहीं सकता, दास भाव रखेंगे हमेशा ही अमर क्रेडिट, दास दासान दास, दास भाव रखेंगे। लेकिन इतने में काम नहीं बना, उनको चतुरता से भगवत स्मरण करके उन्होंने सुरसा को भी पार करके आगे बढ़े, इतने भी नहीं काम बना, तीसरा खड़ा हुआ, कौन था वो, सिंहिका, वो तो इतने खतरनाक निकला, हनुमान जी ऊपर जा रहे थे, नीचे उनके छाए को पैर में दबाया, शैडो को अचल कर दिया, ना मुझे ब्रह्मा के वरदान है, नहीं जा सकता, अचल कर दिया उन्होंने, छाई को पकड़कर पैर दबाकर, छाई को पैर में दबा करके उनको जाने नहीं दिया, हनुमान जैसे भक्त रामदूत, ये सिंह का जो है सिंह जैसा वो कौन है, वो है ईर्ष्या, एनवी, आलस्य के बाद अहंकार, अहंकार के बाद ईर्ष्या, अहंकार से भले शून्य हो जाओ, करेंगे ना काम, तो अभी करने से जो मैं करता हूं ये भावना जो आता है, आई एम द डूअर, ये भावना आते ही तुरंत ये इंक्लिनेशन होगा, तुरंत मन में विचार आएगा अगर आपसे कोई बेटर कर रहा है ना, तुरंत उनका प्रति ईर्ष्या होगा। थोड़ी सी चले लोचना आपसे आगे चला गया, बहुत ईर्ष्या होगा उनके प्रति आ रहा। जो आपके समान है उनके प्रति स्पर्धा होगा, जो आपसे आगे निकल गया उनके प्रति ईर्ष्या होगा, जो आपसे पीछे रह गया उनके प्रति बेखातिर भाव होगा। ये तीनों ही खराब है भक्ति के लिए। ईर्ष्या वृत्ति, ईर्ष्या कैसे बनता है? ईर्ष्या मन में जब आता है, एनवी जब आता है, क्या होता है? ढूंढ ढूंढ करके दूसरे का दुर्गुण ढूंढना पड़ता है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होता है, दूसरे का दोष निकालना पड़ता है। ये जो दोष है वो क्या है? डार्कनेस तो है, ये छाया है। छाया को पकड़ करके आपने बोलते हैं कि मैं कुछ हूं, उसका दोष मुझे पता है, दोष को बखान करेंगे। ये जो वृत्ति है ये सिंघी का वृत्ति है, छाया पकड़ ली। दोष देखने में इतने उस्ताद है, कुछ भी दोष ना हो लेकिन स्वयं दोषपूर्ण है, नहीं दोषी दोष दिखेगा। देखिए हम लोग सब इतने एक्सपर्ट फॉल्ट फाइंडर है, कैसे भी चरित्र लाके खड़ा कर दो हम दोष निकाल रहे हैं, है ना? नहीं, नो मैच ऐसे एक्सपर्टी से दोष दृष्टि देखना है। तो इस प्रकार दूसरे का जो डार्क पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, उसको देख करके हम अपना भक्ति को भी बाधित करते हैं और दूसरे को भी बाधा देते हैं। दूसरे को बाधा नहीं देने से हम बाधा स्वयं नहीं पाएंगे, लेकिन हम भाव भी ऐसा है। तो हनुमान जी से चतुराई से सिंहिका के साथ वार्तालाप किए। सिंहिका बोला आ जाओ मुझे खाना है। तो उनके अंदर भी हनुमान जी बड़ी सूक्ष्म रूप धारण करके गए, उनका पेट को फाड़ करके निकलाए, पेट फाड़ दिया उनका। इस प्रकार ये जो ईर्ष्या भाव है अहंकार से बढ़कर के दोष दृष्टि का भाव है, उसको इस प्रकार समूल नाश करना होगा। मूल से जाकर के भगवत शरण लेकर के उनको फाड़ करके निकलना होगा उनसे। क्या करे, मन में तो स्वभाव ऐसे हो चुका है कि दोष नहीं देखने से कम दोषी दोष दिखता है। कभी प्रयास कभी किए कि कुछ गुण है कि भी नहीं? भगवान की सृष्टि से ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिनका कोई गुण ना हो। भले हमको ना दिखे लेकिन रिसर्च करो, कुछ मिलेगा। महात्मा लोगों ने उदाहरण देते हैं दो प्रकार मक्खियों का, एक साधारण मक्खी और एक मधुमक्खी। दोनों ही मक्खी होते हैं। साधारण मक्खी का स्वभाव क्या है आप लोग सब जानते हैं, जहाँ कचरा है, गंदगी है, वो वहीं पे आएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अरे भाई गंदगी में इकट्ठा संतुष्ट हो जाओ तभी, इतना भी संतुष्ट नहीं हो क्या करेंगे, वो गंदगी को ले करके अपने सेट फेट करके जाके जहाँ अच्छा वहीं कंटामिनेट करें, उसके भी मर्थ यही करते ना मक्खी मच्छर का ही काम। केवल गंदगी के पास जाएंगे ढूंढ करके उनको लेकर दूसरे को भी गंदा करेंगे, ये मक्खी का गुण है साधारण मक्खी। मधुमक्खी में एक मक्खी है छठपति, वो भी है छह पैर वाला, लेकिन वो चाहे कैसे कांटेली युक्त फूल हो, लाल पीला नीला कैसे कलर हो, वो जाएगा फूल के पास, कोई तोड़ेगा नहीं, मोड़ेगा नहीं, मरोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, जस्ट पार्किंग करेगा, बड़ा धीरे से उसके ऊपर बैठेगा, अपने शरीर डालेगा। जो सबसे सारा सार वस्तु मिठास को निकाल लेगा, ये टैलेंट उनका पास है। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी को पूछा, बोले अरे मधुमक्खी भैया तू इतने कायदा से फूल फूल घूम घूम करके मधु संग्रह कर रहा है, ये मनुष्य चोरी करके ले जा रहा है जैसे मारपीट करके? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, भैया सही बात तो है, मनुष्य मधु ले जाता है, मैं इकट्ठा करता ले जाता है, वो तो कर नहीं पाएगा, लेकिन मधु बना नहीं सकता, मैं तो फिर मधु बना लूंगा। मधु बनाने का जो टैलेंट उसको नहीं चोरी कर पाएगा, मधु चोर कर लेगा, यही कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। ऐसे महापुरुष लोग कहते हैं, एक बहुत सुंदर लता है, उसके बहुत सुंदर एक फूल खिला हुआ है, आप जाकर फूल को तोड़ सकते हैं। फूल को तोड़ने के बाद फूल कितने समय रहेगा? कुछ ही समय, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक आध दिन में नहीं टिकेगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर उसके होता कुछ दिन रहता, लेकिन जैसे विच्युत किए तोड़ दिए सूख जाएगा। फूल तोड़कर सुखा दे सकते हैं, लेकिन लता अगर सख्त है, सबल है, तो दूसरे दिन दूसरा फूल भी खिल जाएगा। तो इसलिए हमको इस प्रकार होना चाहिए, कोई हमसे कुछ छीन भी ले, हमसे अलग हो जाए, तो उसका मूल्य रहे ना रहे, लेकिन हम अगर सबल सशक्त रहें, दूसरा इस प्रकार गुण प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी हो, ये जो सिंहिका के वृत्ति, जो ईर्षा वृत्ति है, दोष दृष्टि का भाव है, उसको इस प्रकार समूल नाश करके भगवत कैंकर्य, भगवान के किंकर, उनके सेवक भाव को ला करके उसको जीत करके आगे बढ़ना होगा। देखिए, जब साक्षात भगवत दूत हनुमान के सामने इतने अड़चन, इतने बाधा आ सकता है, तो हाँ, वे 10-5 साल करके बोलते हैं, हम सो सीनियर भाई, जिससे क्या अपने ही तुम्हें, अरे तो उनसे ज़्यादा सीनियर हो गया क्या, तकलीफ नहीं होगा तुझे, मुझे सब लोग पहचानते नहीं हैं, है ना। तो इतने सारे पार करने के बाद, प्रवृत्ति को पार करने के बाद हनुमान जी गए, अंततः लंका में पहुंचे। लंका के दीवार पारी करने का प्रयास करते ही एक राक्षसी उठा, लंकिनी, सिक्योरिटी इंचार्ज था, लेडीज चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज था, वो बहुत पावरफुल था। लंकिनी माताजी, शी वाज फ्यूरियस, यस, उठ करके हनुमान को, हनुमान शाम हो गया था, वो बोले कि दिन में जाऊंगे देख लेंगे, शाम के समय, रात में प्रवेश करना चाहता था लंका में, से टाइम एडजस्ट करके, बिल्कुल अंधकार जो हो चुका था, अंधकार में भी इतना हाई टाइट सिक्योरिटी माताजी थी चीफ, वो तो देख ली, उठ करके गाली देकर थप्पड़ चला दी उनको, एक चाटा मार दी हनुमान। हनुमान जी बोली, कौन है भैया, चाटा मार दिया मुझे, तो उन्होंने रिवार्ड किया, उनको रिप्लाई दिए, बोले चाटा टिट फॉर टैट, जैसे चाटा उन्होंने बाएं हाथ मार के दाएं हाथ में चला दिए। एक चाटा मारे, वो तो लगा हनुमान जी को मत्त हस्ती को जेना कुसुम मंडा, एक पागल बड़ा हाथी को एक फूल के रोल बनाकर मारो तो कितने उसको कष्ट होगा, तो हनुमान जी को ऐसा कष्ट लगा उनके चाटा से। हनुमान जी उठाकर राइट साइड में थमा दिए उसके ऊपर, तो तुरंत दांत से जीभा को कमड़ कर मिट्टी में गिर पड़ा, तुरंत धम करके, घंटा भर तो उनको लगा गोल हो गया, कुछ सुन हो गया शरीर उनका, बुद्धि हनुमान जी चले जाते, बोले नहीं माता जी खड़े होने दो, क्या हो गया देखते हैं। घंटे भर बाद उठ करके अंधकार हो गया, तो खड़ा हुआ अंधकार तो ऐसे ही था, खड़े होकर देखा उनको ऊपर से नीचे तक, देख करके पूरा ज्ञान आ गया, बोला अरे वानर, बहुत दिन पहले ब्रह्मा जी का बात मेरा अभी याद आ रहा है ना, क्या ब्रह्मा जी ने मुझे बोले थे, जिस दिन एक वानर आकर तुझे चाटा मार करके भूमि में गिरा देगा, समझो लंका और लंकापति का सर्वनाश के समय आ चुका है। आप ये होता है ना, उसका मेडिसिन का क्या होता है, एक्सपायरी डेट आ चुका है, एक्सपायरी डेट आने वाले है, समझ लो। अब मैं क्या करूं, एक्सपायरी डेट आ चुका है, मैं तो ब्रह्मा कहे मुझे तू जाओ, वो छोड़ दिया, एक चाटा सफिशिएंट था, आगे वो कुछ युक्ति नहीं किए, बोले जाओ, और चीफ सिक्योरिटी जब छोड़ दिया, बाकी क्या करेंगे। रात में ही प्रवेश किए थे लंकाओं को देख ना पावे हनुमान जी, इसलिए रात को गए थे, मैं पूरी रात आज फुल नाइट ड्यूटी करूंगा, पूरा नाइट के जितने ज्यादा से ज्यादा सर्च में कर डालू आज रात को, आज मच आज पॉसिबल सर्च कर लू पूरी लंका, ढूंढ डालू कहां सीता है ढूंढ डालूंगा। तो सर्चिंग शुरू किया, छोटे स्वरूप धारण करके ढूंढे, जैसे घर के अंदर के बिल्ली इधर उधर भागता रहता है, ऐसे भागते रहे, बिल्ली को सब और लोग करते हैं, हाँ बिल्ली घूमता है क्या है, लेकिन वो पूरे नजर तक घूम रहे थे। इस रात को लंका में हनुमान जी ने देखे लाखों लाखों संख्या में असुर भिन्न भिन्न प्रकार के पाप क्रिया में लिप्त थे, पाप कार्य में लिप्त थे। हनुमान जी देख करके आश्चर्यचकित, ही इतनी खतरनाक, इतने पाप, इतने अंधा पाप कम कर रहे हैं सब। ढूंढते ढूंढते अति आश्चर्य होकर रावण के भवन में जाकर पहुंचे, दी महल, रावण के महल तो लंका में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण महल था, वहां पहुंचे, उस भवन के अंदर भी घुस गए। रात में देखे कि कई रावण के अनुचर परिचर सब किस किस प्रकार से सोए हुए हैं, किस प्रकार भोग वासना से पाप आदि क्रिया से लिप्त हैं, ये सब अनिति अन्याय पाप कृत्य को स्वयं देखे, लेकिन उनके मन में कोई उत्तेजना नहीं आया, क्योंकि उनका मन सीता अन्वेषण में बिल्कुल फिक्स था, सीता जी को ढूंढने में मन बुद्धि केंद्रित था, उसी में बिल्कुल सेंटर अराउंड उसी केंद्रित था, इसलिए दृश्य कुछ उनके आंच नहीं डाला। यहां तक कि रावण के बेडरूम में चले गए, विशाल सज्जा पड़ा था, एक आध किलोमीटर उनका लंबा चौड़ा बेड होगा रावण का, इतने विशाल सुदृढ़ सुंदर शरीर था रावण का, दस सिर था उसका, वज्र के चिन्ह कहीं था, दिग्विजय करके कितने बड़े बड़े लोग को हराया मारा, ये सब विशाल गठिला शरीर था उसका, बहुत विशाल भुजदंड, और उनके आसपास हजारों संख्या में सुंदरी युवती नारी सोए हुए थे, वो भी देखा उन्होंने। रावण का जो जो उनका फेवरेट सब खाद्य है पेय है सब करकार कर सब पड़ा हुआ था। देखते देखते रावण के बाजू में एक स्त्री को देखा जो मंददरी थी, इतने सुंदरी थी, उनको देख करके हनुमान जी डिसाइड कर ले यही सीता जी है, भगवान राम जितने सुकुमार सुंदर तो ततोधिक है, यही सीता ही होगी जरूर करके वो पास में गए देखने के, लेकिन बोले हाय हाय वो बंदर है, बंदर बुद्धि है, ये सीता जी हो नहीं सकते, क्यों ना भले सुंदरी तो है लेकिन सीता देवी सीता माता कतई रावण के बाजू में शांति में सो नहीं सकती, जिनके लिए मैं इतने चिंतित हूं, जिनके लिए भगवान इतने चिंतित है, वो कैसे शांति में सो सकती है। अब हनुमान जी देखे नहीं थे सीता जी को, लेकिन डिसाइड के ना वो तो हो नहीं सकती, निकल चल रहे वहां से, ढूंढ ढूंढ करके कहां कहां विभीषण का पता चला था, बोले एक तो कहीं है तुलसी पेड़ रखकर पूजा वूजा कर रहा है, मंगलाते समय यहाँ पास कर गए, सुबह हो गया, बोले अब टाउन से क्या है बगीचा में चले, बगीचा में चले गए, बगीचा में ढूंढ ढूंढ करके मुख्य बगीचा के अंदर अशोक वाटिका में पहुंच गए, देखे कि अशोक वृक्ष के नीचे संपूर्ण सृष्टि में जितने कोई सुंदरी हो सबसे श्रेष्ठ सुंदरी एक स्त्री बैठी हुई है, पूरे शरीर में जैसे धूल ढंग गया है, जो साड़ी पहनी है बिल्कुल मैला कुचला है, बेणी कई कमिंग कोई बंधन नहीं हुआ है, केश बंधन नहीं हुआ है, अनवरत रो रही है, अविराम गति में रो रही है बैठी, तो उनको देख करके हनुमान जी डिसाइड के ओ सीता हो सी। अब तो बोले ये तो निश्चित रूप से जो लक्षण दिखाई पड़ रहा है तो सीता ही होगी, बांदर है जाकर पेड़ में चढ़ गए तुरंत, उनको क्या परेशानी है, हम जैसे पेड़ में चढ़ने में सिखाई पड़ता है सीढ़ी लगाना पड़ेगा पता नहीं गिर जाएंगे डर, तो उनको तो उनका तो स्वभाव था सखा मृग है, तुरंत चढ़ करके ऊपर बैठ गए, पेड़ में बैठ करके निगाह रखने लगे कि यही है क्या, नहीं मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ अपने आप को, कैसे जानूं। तो करके कैसे पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं मंगल आरती का समय है, वो तो रो रही हैं दिन रात। बुद्धि लगाए, बोले कैसे सीता माता मुझे स्वीकार करेंगे, मैं राम की दूत हूँ। बैठ करके सुबह सुबह मंगल आरती गाए, मतलब भगवान राम की जस गान किए, जस कीर्ति गान करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सियाराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जब भगवान राम की गुण कीर्ति गान करने लगे, सीता जी भूर भूर कर देखने लगी कि ये कौन देवता ही असुर राज्य में कैसे आ गए, भाई यहाँ तो कोई इस नाम कोई लेते ही नहीं, कौन है, घुर घुर कर देखने लगी। तो हनुमान जी थोड़ा नीचे ग्राउंड फ्लोर में आए ग्राउंड फ्लोर में आकर बैठ करके सीता जी ने देख करके समझी रावण ही हो सकता, नहीं तो कोई दूत होगा, ये तो सब माया भी होते हैं, अलग अलग रूप लेकर आते हैं, वो वनर बन के वनर बनकर आ गया, जाकर ये भी चला है, कुछ सीख कर का है, कुछ पैर गान कर रहा है, कुछ कही नहीं बोला, हो सकता है असुर हो सकता है। तो हनुमान जी ने फिर बोलने लगे, बोले माता जी प्रणाम। देखे कि हनुमान जी ने बोले हाथ जोड़ के बैठे हैं, बोले बंदर हाथ जोड़ के बैठे, पता नहीं सब इमिटेशन करते होंगे असुर लोग। लेकिन हनुमान जी ने फिर मुँह खोल करके बोलने लगे, आपने परिचय दिए, लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था, बोली ये तो असुर भी सब इमिटेशन करते हैं, है ना, नहीं देखिए, इसलिए कहा जाता है केवल किसी को कंठी मोटा लगाया, तिलक चौड़ा लंबा लगाया, चोटी बड़ा लगाया, धोती कुर्ता माला सब चकाचक पहना है, कुछ श्लोक उच्चारण भी करता है, ठन ठन नाम लेता है, तो उनको बोलेंगे शुद्ध भक्त नहीं, ये सब इमिटेशन किया जा सकता है, ये सब इमिटेशन किया जा सकता है। ड्रामा में कभी कोई कोई पाठ करते ना, कोई भक्त का पाठ करते हैं, हम लोग तो कभी कोई महाप्रभु का रोल करते हैं, कभी कोई कोई और उच्चकोटि का भक्त का रोल करते हैं, बढ़िया रोल कर लेते हैं कभी, है ना, नहीं लेकिन उनके कोई धूल के बराबरी भी नहीं होंगे लेकिन कर लेते हैं। तो ऑल दिस कैन बी इमिटेटेड, इस इमिटेशन किया जा सकता है। तो फिर कैसे पहचाने कौन सही भक्त है, हाउ डू वी रिकनाइज, क्योंकि इमिटेशन किया जा सकता है। इसी को कहते हैं पहचानने का एक तरीका है, क्या आप करते हैं कोई मूल्य नहीं रखता, क्यों करते हैं वही मूल्य रखता है, व्हाई यू आर डूइंग दिस इमिटेशन, क्यों आप ये करते हैं, अगर इसको किसी को पता चल जाए तब फिर पता लगा सकता है कि नहीं क्या है। मैं उस दिन कहानी बता रहा था, त्रिमंगे अलवा डाकैत के सरदार थे, कोई देखेगा तो चोर है ये, तो उसे भगत बोलता अपने, लेकिन जो कोई केवल उनके क्रिया को देखा, उद्देश्य को नहीं जाना, वो कैसे जान पाएगा। तो व्हाट यू डू इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाई यू आर डूइंग दैट इज इम्पोर्टेंट। वो लक्ष्य को हनुमान ने बताने, जी सीता जी जब लक्ष्य जान पाई तब समझा तो आप तो होंगे श्री राम के दूत होंगे। तो कन्फर्मेशन देने के लिए हनुमान जी ने जब गए थे राम ने तभी जाने थे सफलता हो सकता है उनको, इसलिए हनुमान ने पूछे थे प्रभु अगर जा रहे हैं अगर मुझे डाउट करेगी तो कुछ संतक तो होना चाहिए ना, प्रूफ कुछ प्रूफ दिखाऊं, जैसे आजकल आईडी प्रूफ दिखाते हैं, बोले कुछ दिखाऊं कि जैसे मान ले कि मैं आपके हूं करके आपको पहचान। तो भगवान राम ने अपने हाथ से एक अंगूठी था, जिस अंगूठी को तो कई बार वो निकाले थे देने के लिए, पैसा तो था नहीं, केवट को देना चाहते थे वो नहीं लिया, कई बार निकालते देने के लिए एक अंगूठी था, अंततः तो उसी को निकाल करके दिए हनुमान को, लेकर दो ये अंगूठी क्योंकि मुझे विवाह के दिन सीताजी ने खुद पहना दी थी, उसको तो उन्हीं का अंगूठी है रिंग सेरेमनी, वो तो पहचान लगी, तो अंगूठी दिए थे मुद्रिका, तो उनको दिखाने लगे हनुमान जी, तो उसको देख करके सीताजी ने ले करके अपने छाती में चिपका करके रोने लगी, हाय हाय निश्चित रूप से राम ने तुझे भेजे, और बिल्कुल कंफर्म हो गई कि राम के दूत आए हैं मेरे पास मेरे संवाद लेने के लिए, तो हृदय खोल करके अपने दुख बताने लगी, इतने दिन कितने महीना तक किस किस प्रकार से दुख जंत्रणा कष्ट से उन्हें बिताई बताने लगी, रो रो करके अपने दुख व्यक्त करने लगी। तो हनुमान जी सुन सुनकर रोते रोते बोले मैया आप केवल कहते हैं आप दुखी है, मैं बताऊं सुनो, वो भगवान के दुख व्यक्त करने लगे, बोले जब से मैं उनको मिला हूं किष्किंधा से आए, चार महीना तो ऐसे व्रत किए कोई दिन उनको बिना रोए में देखा नहीं, आकाश से बारिश क्या होगा पानी उनसे गिर रहा था, और एक तो आपको देवर हो दिन रात कभी समान होता कभी सोते नहीं, दो भाई इतने दुख में है आपके लिए कोई किससे कम नहीं, दोनों भगवान की ओर से हनुमान जी राम के दुख बताने लगे दुख कहानी, और सीताजी स्वयं अपने दुख की कहानी बताई, घंटों बातचीत चला, सीताजी बोले ठीक है तब आप जाइए उनको बताइए मेरी खबर। तो इतने में सुबह हो गया था, देखा कि सुबह होने के बाद में वो सब सिक्योरिटी सब जग गए, रावण सुबह उठते ही मुंह धोकर ब्रश करते कि नहीं करता सीधा आता है, अस्त्र लेकर सीधा आता है अशोक वाटिका में, तो रावण जी हनुमान चढ़ गए ऊपर, ऊपर चढ़ गए बोले देखता हूँ वो आ गया, फिर सोया था अभी उठ के आ गया, सीधा उठकर आ गया, खड़ग लेकर आया, दौड़ करके आकर सीताजी के सामने खड़ग आकर के दे चिल्लाया, खूब राजी हो जा मान जा इतना दिन गया है इसे करो इसे करो, खूब भड़प तड़प बोलने लगा, बहुत प्रकार से प्रेरणा दिया कि मान जा राजी हो जा, मैं राजा रावण हूं त्रिलोकाधिपति हूं, ये देवता अवत हमारे से नौकरी वाकरी करते रहते हैं, ये एक मनुष्य है उनको क्यों बल्कि धारण करके बैठे हो, छोड़ो राजी हो जा, खूब धमक चमक दिखाया। सीता जी ने बोले डिसगस्टेड हो गए उनकी बात सुनते सुनते, बोले हे राक्षस सुबह उठते ही फिर आ जाता मुझे तंग करने के लिए, तू मुझे भोग करने के लिए जो भावना रखा है जानता है, कोई तीक्ष्ण रेजर के धार के ऊपर शहद चिपका दिया जाए वो बोले उसको चाट करके खाओ, चाटने से क्या होगा मधु का टेस्ट जितना नहीं आएगा तेरे खंड खंड हो जाएगा जिह्वा कट करके रक्त का स्वाद आएगा, तो मेरे से इस प्रकार के भोग भाग मत रखो, मेरे ओर से सीधा देख रहा है 100 सुई जैसे आंख में घुस जाए जिस यंत्रणा, तो क्यों इतना मेरे ऊपर भावना रख रहा है। तो उसको सुनकर रावण और गुस्सा हो जाता, गुस्सा होकर बोलता है देखो ये सब मैं नहीं सुनने वाला हूं, मैं तुझे लेकर गया था किडनैप करके तुझे मुझे मुख्य रानी बना दूंगा, नहीं मानना मुझे 1 ईयर टाइम दिया हूं तुझे, बोल रहा हूं देखो 10 महीना बीतने वाला है, 10 months गोइंग टू पास, 10 महीना बीतने को है तो अभी तक राजी नहीं हुआ, डेली ड्यूटी में कर रहा हूं तो अभी तक राजी नहीं, देखो और केवल 1-2 महीना बाकी रह गया, अगर 1 साल पूरे में राजी ना हो तो मैं अभी बताता हूं आपको, फिर ब्रेकफास्ट करूंगा तुझे, तेरे जो सुकुमार शरीर को सुखा सुखा कर रखा ना बढ़िया सा मांस को खाऊंगा और रक्त को निचोड़ करके पीऊंगा, ब्रेकफास्ट के लिए कम पड़ेगी तू, राजी हो जा। इस प्रकार धमकी दे करके बाकी चला टाइम में कुछ थोड़े उनका जो लेडी स्टाफ थे बोला पूरे प्रयास करो जितने संभव हो सके तंग करो उनको, स्ट्रेस दो उनको, परेशानी करो ताकि वो राजी हो जाए, उनको एक्शन में एक्टिवेट करके राकेश को चला गया राम। और राकेश लोग नाना प्रकार से ये देने लगे वो देने लगे, तो उसके बीच में एक राक्षसी आई जिसका नाम था त्रिजटा। जानते त्रिजटा कौन है? कौन है? हाय रे हाय, आप भारतीय भी है? नहीं जानते त्रिजटा कौन है? हाँ, राक्षसी तो थी। करेक्ट, इन तरफ से कहे, आपके तरफ वाले कोई नहीं कह पाए, मेल वाले उत्तर दे फीमेल का परिचय बताओ। विभीषण का बेटी थी वो, आकर के देखा कि सारे मिलकर के उनको ही अपंड थी उसके साथ, आकर के कहानी बताई, बोला काल रात को मैं भयानक स्वप्न देखी। क्या ना, इसे पूरे रावण उनके परिकर सारे सैनिक मंत्री जंत्री सब नरक के कुंड में डूब रहे हैं और काला वस्त्र पहने हुए हैं, इसे डूब रहे हैं, भगवान राम चमचमाते हुए वस्त्र पहन कर आए हैं और आपको उद्धार करने के। इस बात को सुन करके सारे असुरणी जो तंग कर रहे थे डर गए, ये सब बात को इंटरप्रेट करने ये सब सारे दौड़ कर गए रावण को बताने के लिए, ऐसे स्वप्न दिखाई पड़ा क्या उनका अर्थ हो सकता। तो त्रिजटा ने समझाया चिंता मत करो, देखो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, शुभ लक्षण आता है देखा। तब जब चले गए थोड़ा फारिक हुआ तो फिर ग्राउंड फ्लोर में आया हनुमान ने आकर बता कर, तो उनको ऊपर से इतने गुस्सा आ रहा था, बोला उतर करके सारे को मार दूं, फाड़ पूरी खत्म पूरी, इतने तंग करते आकर लेकिन परमिशन नहीं दिया था। बोला मैया एक बात, मुझे परमिशन दो, उनका खबर आज ही ले लूं सारे, मैं मार के खत्म कर दूं सारे को। रावण वध कर दूं आज, यही रावण था ना, ढंग से देख नहीं पाया, अंधकार था थोड़ा, पत्ता के नीचे पीछे आ गया देख नहीं पाया, मैं छिप के बैठा था, वही था आवाज कर रहा चिल्ला रहा था ना, वही था, उसको आप काम खत्म कर दो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मत करो, प्रभु राम आएंगे वो करेंगे, आप मत करो, आप तो दूत हैं, दूत के काम करो। तो समझा बुझा करके बोले तुम जाओ राम के पास चले जाओ, बाकी काम राम करेंगे, तुम मत करो। तो उनको भगवान के संदेश दिया, इसलिए सीता जी ने बोले देखो हनुमान तू इतने शुभ खबर मुझे दिया, इतने सुख दिया मुझे, लेकिन मैं तुझे कोई भेंट उपहार देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या कर सकती हूँ, मैं तो इस प्रकार दुखी अवस्था में पड़ी हूँ, तो आपको केवल कृतज्ञता ज्ञापन कर सकती हूँ, इतना कहता हूँ, थैंक यू कह सकती हूँ बस। हनुमान बोले मैया आपके थैंक यू मेरे लिए बहुत है, ये सब वस्तु लेकर मैं क्या करूँ, लेकिन मेरे लिए थैंक यू तो बहुत है ना, लेकिन क्या है ना, लेकिन वो रिंग तो मैं आपको दे दिया, आप पहचान लिए मैं प्रभु का हूँ, लेकिन प्रभु कैसे पहचान होगा, तो मैं आपसे भेटा करके भेंट क्या कर सकता, हाउ डू हे रिकनाइज। तब सीता जी कुछ मिला नहीं, कहानी बताया, बोले देखो हनुमान मैं कहानी बताती हूँ, वो कहानी केवल श्री राम और मैं, ये दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति कोई जानता ही नहीं, ये कहानी अगर तू तो बता देना राम बोलेंगे निश्चित सीता के पास, क्योंकि ये कहानी और किसी को पता नहीं। तो हनुमान जी को बैठा करके सीता जी स्वयं आपने आत्मा जी गुप्त कहानी एक बताए, बोले एक बार की घटना है सालों पहले, लगभग 12 साल पहले का, 14 साल पहले का घटना, जब वनवास के बाद चित्रकूट में हम रहते थे, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के एक स्फटिक शिला के ऊपर हम दोनों बैठे थे, इतने सुशोभित अरण्य था चित्रकूट अरण्य, इस अरण्य को बैठे के सुहा दर्शन कर रहे थे, प्रभु के पास में बैठी हुई थी, इतने में इंद्र के पुत्र जयंत को सहन नहीं हुआ, मेरे रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर के एक कौआ बन करके दौड़ा और आकर के मेरे ऊपर चंचू आघात किया, भगवान के पास बैठी थी तब भी आकर अटैक किया, देखिए ये काम इतने खतरनाक है, भगवान के पास बैठी थी तब आकर अटैक किया, लेकिन भगवान तो भगवान है, अब बाण फाण उठाने घास उखाड़ करके फेंके, डर के मैं भागा भागा, इंद्रपुत्र देवता होने के नाते पूरे 14 भुवन तक राइड किया दौड़ा, लेकिन घास उसका पीछा नहीं छोड़ा, घास का तिनका उनके पीछा छोड़ा नहीं, अंततः उनको जाकर पकड़ करके आकर दौड़ करके फिर सरेंडर किया, राम के पास वापस आया। जितने दौड़ कर गया था फिर ब्याह कितने दौड़ कर आके भगवान के चरणों में शरण गया, माफ करो त्राही मांग पाही माम। तो भगवान बोले देखो मैं रिलीज किया हूँ, वो तो खाली हाथ लौटेगा नहीं, कुछ तो ना कुछ तो करो बचाओ। तो एक आँख फोड़ दिया उनका, और जो घास के बाण भगवान ने भेजे थे वो उनका एक आँख, इसलिए कौवा के एक आँख नहीं होते, सब का नहीं होते। कौवा वंश के जितने कौवा देखेंगे ना उनका एक आँख काना है, फोड़ दिए थे, एक आँख वाले होते। तो इस घटना को और कोई नहीं जानते, एक कथा बताना। तो कथा बोले कथा बताऊंगा कोई और, तो सिद्धार्थ क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो देखते थे मैले कुचले बाल के अंदर हाथ लगाए तो एक पीला पीला एक मणि निकला, मथा मणि था वो, कैसे रुक गया था, कब था, शादी के बाद में जनक महाराज से विदा लेकर के जब प्रथम बार अयोध्या भवन में प्रवेश किए थे तो कौशल्या और दशरथ ने मथी मणि पहनाए थे उनको, तो मणि को रखे थे और नहीं, लेकिन बाल के अंदर ऐसे छिपा हुआ था तो मिले, तो उसको उतार करके हनुमान को दे दिए, बोले उनको दिखाना और पहचान लगे ये अलंकार। तो हनुमान जी उसको लेकर के तैयार हुए आने के लिए, उनसे विदाई लिए, बहुत सारे आशीर्वाद लिए, लेकर के बोले अभी सुबह हो गया कुछ खाया पिया नहीं, ब्रेकफास्ट खा ली जाऊँगा, बानर है हमारा ब्रेकफास्ट कौन सा, दोसा इडली चाहिए, फल खाऊंगा, फलाहार करना है। वो तो उपवन था ही, वो तो रावण का नंदन कानन था, स्पेशल गार्डन था, तरह तरह के फल फूल था, इधर बानर है अपने स्वभाव, एक जो पक्का हुआ तोड़ दे पूरा तोड़ देगा, एक खाएगा बाकी फेंक देगा, वो लगा मुँह में लगा फिर जो अच्छा लगा खाया, जो नहीं बानर ऐसे करते ना एक चुबाया फेंक देगा सारे फिर निकालेगा, अरे भाई खराब है तो छोड़ दूसरे को, ना नहीं सब खराब करेगा, बंदर स्वभाव। तो बंदर स्वभाव हिसाब से सारे कानन को उजाड़ा, जो सिक्योरिटी वाले थे वह चिल्ला हुए कि क्या कर रहा है बंदर, पहले बंदर कभी थे नहीं यहाँ लंका में, मंकी प्रूफ गार्डन था वो, लेकिन कैसे घुस गए मंकी, वो चिल्लाए वो मंकी तो कुछ पेड़ तोड़ जा रहा है, केवल फल फल नहीं तोड़ रहा है, फल के अलावा पेड़ ही गिरा देता है। बोले एक धाम तो बंद आया, जाकर इमीडिएट रिपोर्ट किए, रावण तो बाथरूम में था तो लेट बनाता है ना लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन से सिर्फ सिख जो सेनापति उनके पास गया, सेनापति बोला कितने भयानक इतने गड़बड़ कर रहा है, पूरे एक ट्रिप सोल्जर पर 80,000 सैनिक आए, 80,000 राक्षस सेना आए, ये बांदर को पकड़ के बोला इमीडिएट अरेस्ट करके लेकर आओ, उसको गिरफ्तार करो, उसको आए गिरफ्तार करने के लिए, 80,000 को एक घंटा भी नहीं लगा ऑल आउट कर दिया मार मुर्गे ठप्पा, कोई आए नहीं रिपोर्ट देने के लिए, भाई हम मरे कोई बचे ही नहीं, कौन आएगा, वो वेट करता रहा नहीं आया। तो सिक्योरिटी जो बाहर से दूर से देख रहे थे दौड़ के आके बताए, बोले सार सारे समाप्त ऑल आउट। अरे तो रावण तो बाथरूम से आता गुस्सा मिला, भेजो सेनापति जम्बू माली, एक महासेनापति राक्षस सेनापति, वो दौड़े कुछ प्लाटून सैनिक लेकर दौड़े बांदर को भगाने के लिए बगीचे में बांदर एक घुस गया है उसको भगाने के लिए, 80,000 सोल्जर निहित हो गए, पूरा फ्रंट पेज में आया, तो ये दौड़े सेकंड बांदर भगाने के लिए दौड़े महासेनापति जम्बू माली, और जाकर पहुंचे युद्ध हुआ तो उन्हें उठा कर चक्र बात कर फेंक दिया, उड़ा दे जा डेड बॉडी गिरा जा करके वहाँ कैपिटल सिटी में, अब तो अब कुछ मैसेज नहीं था, डेड बॉडी आ चुका था। उसको देख कर रावण ने उनके एक उनका स्वयं पुत्र था, स्वयं उनको अपने हाथ से युद्ध शिक्षा दिया था, ट्रेंड अप किया था, महायोद्धा था अक्षय कुमार, उनको सैन्य देकर गाड़ी में गया, रथ में गया, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र से लेस हो करके अक्षय कुमार हरिकार करके दौड़ा, भयंकर युद्ध हुआ, अंततः अक्षय कुमार को भी हत्या कर दिया। ये मैसेज आया तो आउटरेस्ट हो गया रावण, तो गुस्सा में चूर होकर बोले बंदर है, तो अपने महासेनापति इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत जो इंद्र को भी जीत सकता है, इंद्रजीत तो था ही, इंद्र को भी जीत सकता, इतने महायोद्धा अतिरथी था इंद्रजीत। सारे शास्त्र के ज्ञान था उनको, बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र आदि का भी ज्ञान था। उनने गया, भयानक युद्ध हुआ इंद्रजीत के साथ। अंततः तो देखा कि वानर कोई साधारण वानर नहीं है, तो उसी को तो उसी सिखा दे, तो ब्रह्मास्त्र संधान किया। ब्रह्मास्त्र के ऊपर में नागास्त्र लगाया, डबल टू इन वन लगाया। तो हनुमान जी देखे कि ब्रह्मास्त्र है, उनको तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र को अवमानना ना हो जाए, उनको सम्मान करने के लिए। और मन में था, थोड़ा रावण आया था सुबह से, वो ढंग से देख नहीं पाया, थोड़ा हम देखें उसके भवन में कैसे रहता है, ढंग से देख तो लूँ, थोड़ा बातचीत तो कर लूँ, ऐसे मन में था विचार। बोले चलो क्या कर लेगा, तो हार गए जानबूझ करके। वो तो हार गए ब्रह्मास्त्र के सामने, तो नागा पास था, बांध गए नागा पास में, बांध करके इंद्रजीत ने अपने गाड़ी में लोड करके ले गया, उनको मारा नहीं, बांध कर अरेस्ट करके ले गया, पिताजी के सामने लेकर चला। राजभवन में सारे रावण बैठा था अपने विशेष सिंहासन पर, और चारों तरफ बड़े बड़े मंत्री पारिषद परिकर से बैठे हुए थे, हजारों असुर सेना बैठे थे उनके बीच में, उनके भवन में, राजभवन में लेकर लंका के मुख्य राजभवन में उनको छोड़ दिया गया। वो बंधे हुए थे हाथ पर बंधा हुआ, सब देखने लगे, हंसने लगे, बोले वानर है, हंसने लगे। हनुमान बोले हंस क्यों रहे? तो सबसे पहले रावण ने उनको पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो ये बात पूछना लगा, देखते रहे तुम अंदर हो, पूछ रहे तुम कौन हो। तो कौन हो के उत्तर से हनुमान जी ने बड़े दमदार जवाब दिए, दासो अहम रघुनाथस्य, ये आइडेंटिफिकेशन दिए। क्या दिए? दासो अहम रघुनाथस्य, मैं रघुनाथ जी के दास हूँ, यही मेरे परिचय है। सभी भक्तगण, हम सभी का यही परिचय मात्र है। आमी कृष्ण दास, यही विश्वास कर ले यार दुख ना। अगर हम लोग सब अपना यही रियल आइडेंटिटी को मान ले कि मैं कृष्ण के दास मात्र हूँ, दासत्व ही मेरा कर्म है, तो हमारा कोई दुख नहीं रहेगा, समझ जाओ। तो इमीडिएट आंसर हनुमान जी ने दिए थे, दासो अहम रघुनाथस्य, मैं उनके दास हूं, दूत बनकर आया हूं, तू मेरा बगीचा उजाड़ दिया ना सार, बुरा ना माने, बंदर है बगीचा उजाड़ दे, उसको डिसिप्लिन में पालन ना आता है क्या? बंदर बगीचा उजाड़ खाता, मेरे स्वभाव है, इसी मैंने चाह, तू इतने सैन्य हत्या कर दिया, मेरे बेटे को इतने सैन्य को मार दिया ना, मेरे से मारे मैं क्या जानता हूँ, मेरे से मारूंगा नहीं, मैं तो करूंगा, मेरे से मारने के लिए आए थे, मैं मारने के लिए उनके लड़ाई के, मर गए मैं क्या करूँ मुझे मारने आए थे, मैं रिएक्ट किया, मर गए। रावण ने बोला ये बड़े उदंड है बंदर, मृत्यु दंड दिया जाए। अच्छा, विभीषण उठ करके बोले, महाराज भाई साहब देखिए, नीति के अनुसार कोई दूत को मृत्युदंड देना अन्याय है, आप उसको डांट सकते हैं, पिटाई कर सकते हैं, और कोई दंड, मृत्युदंड दूत को नहीं दिया जाता, एटलीस्ट ये दूत है, दूत को मारने से क्या फायदा, आपके बदनाम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके नहीं मारेंगे उसको, बदनाम होगा, क्या करेंगे क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे, जिसको मजा चखेगा, बहुत पूछ उठाकर कुत्ता है, ऐसे नाम सिखाएंगे, क्या करेंगे, सब मिट करके सारे बड़े बड़े बुद्धिमान विचारवंत राक्षसों मिलकर डिसाइड किए, उनके पूछ में आग लगाकर छोड़ देंगे, भागते रहेगा, फुदकते रहेगा, देखते रहेंगे मजा से, बच्चे हंसेंगे, अब देखेगा मजा, पूछ जल जाएगा, और जाएगा जाके दिखाएगा दूत बना है, जला जला कर अंग जला करके आया। हनुमान जी बोले अच्छा प्रस्ताव, उनको तो अग्नि देवता पहले से बोले थे तुझे कोई काम नहीं करेगा, अग्नि भी सारे देवताओं का वरदान पहले से था, और उनके बात पता नहीं। तो हनुमान जी ने अपने पूछ लंबा बहुत बड़ा कर दी, 10-5 किलोमीटर फैला दी, तो जितने लंका सिटी में वेस्ट क्लोथ था सब घर घर से लाए, कई ट्रक लोड, कई ट्रक लोड कपड़ा ला करके बांधे, कितने दिन लगा होगा, कई लोग लगे होंगे बांध कर, कई गैलन पेट्रोल और किरोसिन लाकर डाले उसके ऊपर, डाल डुल कर सेट करके विशाल था, उस पर आग लगा दी, आग लगा दिए, वो आग का ज्वाला इतने पकड़ा, जो रस्सी बांध दी, खुद बोले रस्सी होकर रस्सी जल गए, रस्सी पकड़ कर जाएंगे, हमको भी आँच लगता है, छोड़ दिए, बोले ऐसे जलेगा तो देखते रहेंगे, ताली बजाते रहेंगे, कूदेगा और कहाँ जाएगा, छोड़ दिए, कूदने लगे, कूद करके बंदर तक कूद कर तुरंत जाकर ऊपर बैठे छत के ऊपर, छत को बोले फैला दिए, सारे घर में आग लग गए, उसमें आग लगा तब कूद गए, दूसरे में आग लगा, तीसरे में, और कोई फायर स्टेशन को फोन करने, फोन तो था नहीं तभी, पता ही नहीं लगा, सारे कॉलोनी की कॉलोनी आग लगा दिए, लोग दौड़ करके घर द्वार जल रहा है, पानी के अंदर अंदर जा घुस करके सब जल रहा है, घर बारी का पानी के अंदर घुस कर खड़े, पूरे लंका सिटी अन फायर, ऐसे हाल करके आ गए। जब आकर पहुंचे जला जला करके, फिर जाके समुद्र में अपने पूछ को ठंडा करके फिर रिटर्न आ गए। आ करके लोग उसे बैठे थे, अंगद आदि देखे कि जय श्री राम का आवाज़ आ रहा है, कुल हनुमान लैंडिंग कर रहे हैं जरूर, क्योंकि ये आवाज़ राम नाम का गुंजन तो हनुमान से होगा, लड़ने की मैसेज, बोले जरूर विजयी होकर के आया है, नहीं तो ऐसे नाम नहीं लेगा। आप आकर हनुमान जी सारे रिपोर्ट बताए, बहुत खुश हो गए, इतने खुश हुए, आप सारे ट्रिप चलने लगा कि हम सफल हुए, सीता जी की देख कर आए और ये भी प्रूफ भी लेकर आए हैं। चले रास्ता में उनका मधुबन फॉरेस्ट आता है, सुग्रीव का उनका रॉयल फॉरेस्ट, उसमें घुस करके खूब तोड़ ताड़ कर खाने, बंदर तो बंदर ही होते हैं, वहाँ के सिक्योरिटी लोग आकर कंप्लेन किए राजा का फॉरेस्ट कर दे, उनको दो चार थप्पड़ मारे, वो जाके सुग्रीव को कंप्लेन किया, आपके लोग घुस कर खाते हैं, जबरदस्त मारपिटाई करते हैं मुझे, तो कौन ना हनुमान, तो सुग्रीव बोला ये तो पार्टी थे, ढूंढने गए थे, तो ऐसा करते मतलब जरूर सफल होकर आए, बोला उनको जाकर बोलो कि मैं जरूर बुला रहा हूँ जल्दी से, तो उनको जल्दी भेज दिया। सुग्रीव पूछे, बोले बिल्कुल सफल होकर आए, सीता जी का बिल्कुल मैसेज उनका प्रूफ लेकर आए, तो सुग्रीव जी ने इतने खुश हो गए, भगवान राम के पास लेकर गए, स्वयं सुग्रीव अंगद जाम्बवान हनुमान ऐसे कुछ जनरल के साथ और माल्यवंत गिरी में गए, जब भगवान बैठे थे बड़े दुख में, जाकर भगवान को प्रणाम करके बोलने लगे, जैसे भगवान देखे अब सीता के ठाव करके अन्वेषण संवाद लाए, इतने दिन के बाद इतने शुभ खुशखबरी भगवान को मिला, भगवान उठ करके आ गए, घुटना टेक करके हनुमान के सामने ऐसे बैठे, मानो इतने उत्साह था उनके मन में, जैसे एक एक बात को पी जा रहे हैं, हृदय पिघल चुका था, आंख से आंसू धारा बह रहा था, मन बिल्कुल तड़प रहा था, ऐसे दशा में हनुमान को एक एक बात को सुनना चाहते थे, क्योंकि इसमें सीता जी के संदेश था, सुने सारे डिटेल क्या क्या भाषा बताए, अंततः सीता की दुख स्टोरी हनुमान ने सब बताया, वो स्टोरी भी बताया जो प्रूफ स्टोरी था उसको बताया, फिर अंततः मथामणि दिए, भगवान इतने तृप्त हो गए, इतने आनंदित हो गए, इतने खुश हो गए, उठ करके बोले हनुमान आज तुझे मैंने इतने प्रसन्नचित कर दिया, इतने खुश किया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं राजकुमार हूं, राजपुत्र हूं, जरूर आपको कुछ इतने बड़े भेंट देना चाहता था मैंने, लेकिन मैं वनवासी भिखारी हूं, कुछ नहीं मेरा पास में, क्षमा करो मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन केवल इतना ही दे सकता हूं, केवल इतना ही संपत्ति मेरे पास है, कृतज्ञता के वजह से मैं आपको आलिंगन कर सकता हूं, आओ मेरे सखा, एक बड़े वार्म आलिंगन एम्ब्रेस दिए हनुमान। हनुमान ने बोले कि मेरे जीवन सफल हो गया, कृतकृत्य हो गया प्रभु, और क्या चाहिए, एक भक्त को आपने पूरा जीवन सिद्धि संसिद्धि में अगर कुछ सबसे बड़ा दी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ा कोई प्राप्ति अगर मिलना होता है तो इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान की बिल्कुल पूर्ण प्रसन्नता के साथ कोई आलिंगन प्राप्त कर ले, बस एक जीवात्मा का सर्व सिद्धि यही होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं न धनंग न जनंग न सुंदरिंग कवितंग वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवता भक्ति रहे तो कि त्वयि। अब ऐसे भक्ति के साथ भगवान ऐसे कृतज्ञता के ज्ञापन, इससे बढ़कर हो क्या सकता। गदगद होकर के भगवान उनको इसी प्रकार आलिंगन किए। बोले हनुमान आप इतने साहस करके इतने बड़े 800 मील सागर को चला गया जाकर इसी से करके आया। देखिए हनुमान भगवान के सामने बड़े बड़े सब उनके परिकर बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, और हनुमान जी हनुमान हाथ बोले प्रभु आप मुझे, मैं चला गया इतनी बड़ाई मेरा क्यों कर, मैं थोड़ी गया था, मैं गया नहीं था, मैं कहाँ गया था, अरे तो गया नहीं था, इसे खबर लाया ना, खबर लाया लेकिन मैं नहीं गया था। फिर प्रभु आपने आपने मुद्रिका भेजे थे उनको जाना था, क्योंकि आपने भेजे तो सीता जी के पास जाएगा ही, आपके वचन तो जुटा हो नहीं सका, आपने भेजे मैं उसके ऊपर बैठ गया तो चला गया, मुद्रिका को मैं धारण किया था, मुद्रिका जा रहा था, मैं उनके साथ चला गया, नहीं तो मैं कहाँ तुच्छ वानर हूँ, इतने बड़े सागर पार करके मैं कैसे जा सकता था। देखिए उनके वचन कैसा, कितने उचित वचन है, कोई गर्व का निशान ही नहीं है कि आपने प्रभु आपने मुद्रिका भेजा तो आप जिसको भेजे तो जाएगा ही, प्रभु जिसको छोड़ेंगे किसे नहीं जाएगा, भेजे तो वो गया अपने स्थान पर, मैं उसके ऊपर बैठ करके चला गया। जा करके सुन देख लिया सुन लिया, भगवान ने हंसने लगे बोले हनुमान आप बहुत चतुर हो, बुद्धिमान भी, बलवान नहीं बुद्धिमान भी। अच्छा ये बताओ तुम नहीं गया था, मैंने मुद्रिका प्रेरण किया आप उसके साथ चले गए, तो आया कैसे, मुद्रिका तो देकर आया, पर आया कैसे रिटर्न, मुझे तो लाया नहीं, कैसे आया वापस। तो हनुमान जी हंसने लगे बोले प्रभु मैं भी थोड़ी आ पाता था, तो छबाना मैं कैसे जा, मुद्रिका के सहारे चला गया, आने तो आया कैसे अभी मेरे न, माता जी ने मथामणि भेजी तो आना था, तो उसके सहारे में आ गया। कहीं कसर नहीं छोड़ते अपने बड़ाई का, अहंकार का निशान भी नहीं छोड़ते, ऐसे इस प्रकार उतर था उनका भावना था। इस प्रकार से अब सीता जी के एड्रेस पक्का हो जाने के बाद में और सुग्रीव आदि वानर सेना के साथ प्रभु चलते हैं समुद्र किनारे आकर के मुझे पहुंचा, देख करके इतने विशाल समुद्र को देख करके भगवान बड़े व्यस्त चित्त हो जाते हैं, इतने दिन से सीताजी भी नहीं मिली, अब सामने ही समुद्र आ गया, अब कैसे पार करें कैसे जाएं। मैं बताया था त्रिपुलानी में एक हफ्ता तक उपवास करके सोने लगे, कितने कष्ट सहन कर ले, ग्रास सहन किए, जो भी किए, तो फिर समुद्र के ऊपर समुद्र ने बुलाया कि डैम बना के ब्रिज बना के चलना है समुद्र को बंध, तो समुद्र को बंधन बनाने के लिए प्रोजेक्ट हाथ में लिए भगवान ने बैठे रहे, इतने उत्साहित किए सारे वानर लोग ने, पहला दिन ब्रिज कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, इन फास्ट डे 100 मील ब्रिज बन गया, 100 माइल्स इन वन डे। बनाने वाले कौन थे, वानर थे। अरे कोई बुलडोजर और क्या जेसीबी लगा करके आज 100 फुट बनाना मुश्किल हो जाता है, रोड बनाना पूरे समुद्र में नहीं स्थल भाग में तो बनाएंगे कितने नकली मकली बनाएंगे। फास्ट डे 100 माइल, सेकंड डे में और जोश आया 150 माइल्स, ऐसे कहते हैं केवल 5 दिन एक हफ्ता भी निकला, वही दिन 5 डेज 800 माइल्स कंप्लीट। 5 दिन के बाद भगवान उतर कर देखे वो ब्रिज ऐसा बना था, इतने सलीड इतने ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड था, कोई कमी कसर नहीं था कहीं, कितने भी स्ट्रंग से स्ट्रंग गाड़ी चला जाए कुछ भी यूज करे ऐसे पक्का ब्रिज बना दिए थे विद इन 5 डेज। 5 दिन में ब्रिज बना करके सारे कुछ के जो पहुंचे तो रावण का जो CID इंस्पेक्टर था मिस्टर शार्दुल, वो उनको इन्फॉर्म किया महाराजाधिराज राक्षस राज रावण क्या खबर ना, ब्रिज बना करके पार कर लिए हैं, हजारों लाखों संख्या में बांदर आए हैं और 2-4 आदमी हैं, पता नहीं, लगता है कुछ लड़ाई फड़ाई पर युद्ध का घोषणा हो सकता है बहुत जल्दी। रावण उसको सुन करके सीरियस हो गए, तो तुरंत आपने जनरल से बुलाया, उनका जो महामहा सेनापति थे सबको बुलाया, बुला करके इमीडिएट काउंसिल मीटिंग किया। मीटिंग में डिसाइड किया एक लीडर किस प्रकार होना चाहिए। रावण ने एक जो एक ग्रेड का जो लीडर होते हैं वो कोई कार्य को डिसीजन करने से पहले उचित व्यक्ति से सलाह लेते हैं। उचित व्यक्ति कौन है? ऐसे ऐसे सलाहकार, ऐसे ऐसे मित्र और मंत्री जिनका गुण के बारे में, चरित्र के बारे में उनको अच्छा तरह से पता हो, और पहले उनका पक्का हित ही से हो, उनके हित के लिए कई ऐसे कार्य किया हो, ये सबको मन में ध्यान में देखते हुए जान करके ऐसे ऐसे हितैषी, ऐसे ऐसे अभिज्ञ एक्सपीरियंस व्यक्ति से सलाह करके डिसीजन करना चाहिए। तो रावण के पास बहुत बड़े बड़े थे सलाहकार, तो उन्होंने, और दूसरे प्रकार के लीडर जो होते हैं वो मीटिंग तो बुलाएगा लेकिन पूछेगा, लेकिन वही सुनना चाहेगा जो उसको सुनना पसंद होगा, वो नहीं सुनेगा जो उनको पसंद नहीं है। वो जानते भी, वो उनको गाली करेगा, झगड़ा करेगा, बाकी बात बताए को उनकी बात बताओ उनको, वो सुनेगा और डिसीजन अपना ही करेगा, अपने ऊपर लेकर सब डुबाएगा। तीसरे प्रकार का लीडर होता है वो ना तो किसी को पूछेगा ना किसी को सुनेगा, वो खुद कर लेगा हैस्टली, इमिडिएट एक्शन करेगा, मरेगा। तो इस प्रकार के रावण ने अपने मंत्रिमंडल काउंसिल तो बुलाया, बुलाकर मीटिंग किया, तो सब पूछे महाराज चिंतित क्यों हैं, क्यों चिंता में पड़े हैं? तो रावण ने सबको बताया, अपने सब बड़े बड़े जनरल्स थे सेनापति को बोला, देखिए आपको मैं सत्य बताता हूँ, आप तो मुझे जानते हैं मैं कितने बड़े महाबली त्रिलोक विजयी रावण हूँ। मैं एक सुंदर स्त्री सीता जिसका नाम है उनके प्रति पूर्ण रूप से आकृष्ट हूँ, उनके रूप सुंदर जैसे, और उसको मैं उठाकर ले आया हूं, अब ले आया हूं, ला करके उनके यहां रखा हूं गार्डन में, अब मैं चाहता हूं उनको मेरी पत्नी बनाने के लिए राजी नहीं हो रही, आप लोग को मैं सलाह पूछता हूं क्या करना चाहिए। ये पूछा लड़ाई झगड़ा हूं ये पूछा, तो बाकी सैनिक से बोले, सेनापति बोले महाराजादि राज राक्षस राज, हम जानते आपके अंदर 10,000 हाथियों की बल है, ये सीता एक साधारण नारी है, मनुष्य है, अबला दुर्बला है स्त्री, आप उनके सामने उनको फोर्सिबली एंजॉय कर सकते हैं, अपने बड़ा पूर्वक कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, व्हाट सी कैन डू। रावण बोला आप जो कहते हैं मुझे क्या पता नहीं ध्यान कर सकते, आप मूर्ख है पता नहीं अपना सार, राम को पता नहीं इसलिए तो कुछ नहीं। तो रावण ने बोला ये गुप्त रहस्य मैं आपको नहीं बताता, सुन लो। बोला आप बहुत साल के पहले का बात है, बोला मेरा तो हैबिट है जहाँ देखो पकड़ लो उनको, ये मेरा गुण है। एक बार मैंने घूमते फिरते स्वर्गीय अप्सरा जिनका नाम रंभा था उनको देखा था, तो उनके सौंदर्य से आकृष्ट होकर के उनके पीछे दौड़ा, उनको चेस किया, तो भाग रही थी लेकिन पकड़ लिया उनको, नहीं माना था, बड़ा पूर्वक भोग किया। तो फिर उन्होंने जा करके उनके पति को कंप्लेन किया, नल कुबेर थे, उन्होंने इतने हरास दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर गुस्सा में कर करके मुझे साफ दे दिए, ब्रह्मा जी ने उसको ओके भी कर दिए। क्या साफ दिए गुस्से में आकर के, बोले रावण इतने बदमाश है, ऐसे ऐसे करता है, अगर आज से आगे कभी भी कोई स्त्री के प्रति बलपूर्वक और अनुभोग करना चाहा तो उनके सर 100 टुकड़ा होकर खंड खंड होकर फट जाएगा, मर जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने उसको ओके भी कर दिए उनके अभिशाप, तो इसलिए इस दिन से मैं फिर जो स्त्री को भोग करना चाहता हूँ बिना और राजी हुए मैं बलपूर्वक भोग नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं रखा हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकता था। इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली राजी हो तब, जबरदस्ती नहीं हो सकती, ना तो फिर ना, आपको मैं बता रहा हूँ मैं सीता को डेली जा रहा हूँ उनको मनाने के लिए, वो राजी हो चुकी है ना, फिर क्या, ना राजी हो चुकी है बोलते एक साल तक मुझे वेट करने दीजिए, अगर एक साल तक भगवान राम नहीं आए मुझे रक्षा करने के लिए तब मैं राजी हो आपकी रानी बन जाऊंगी। ये मुझे वचन दी है, ये झूठ बात बोला उन्होंने, ये झूठ बोला, मीटिंग में भी झूठ बोला उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने। तो बोले सर अब तो 10 महीना जाने के और 1-2 महीने की बात है और क्या है ना, लेकिन आपको पता नहीं वो आकर के लड़ाई करने के लिए सामने बैठ चुके हैं, अब 2-4 दिन में आ जाएगा मैसेज युद्ध का ना। अच्छा तो फिर क्या है, हम तैयार हैं। सभी बड़े बड़े जनरल जितने थे रावण के बल शक्ति वीर्य को बहुत बड़ा बड़ा करके बोलने लगे, ऐसे है आप ऐसे हम आपका साथ हैं ऐसे ऐसे ऐसे। रावण ने बिल्कुल फिर छाती को फिर बैठा, बोला ओके व्हाट प्रॉब्लम। तो विभीषण ने उठकर खड़ा हुआ, बोले महाराज आज राज मेरे भाई साहब देखिए मैं भी मुझे भी आप मंत्री करके रखे हैं, नीति और मंत्री के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ये जितने लोग आपको उपदेश दे रहे हो कोई आपके मित्र नहीं है, कोई आपका हित नहीं चाहते। क्यों ना, जो आपका हित चाहता है जो आप चाहते हैं ऐसी बात नहीं करेगा, जो आपके हित होगा वही बात कहेगा। ये सारे कोई आपका हित नहीं चाहते हैं, जिसमें आप खुश होंगे इसी बात कहते हैं, बस आप मरो खुशी होकर मरो वही बात कहते हैं, उचित बात कोई नहीं कहते। मैं आपको उचित बात कहता हूं मेरे भाई, कृपा करके सीता जी को लाकर वापस कर दीजिए, उनके क्षमा प्रार्थना कीजिए, उनके साथ लड़ाई करना बिल्कुल अनुचित है, लड़ाई होगा धर्म के जय होगा, और आपके सैनिक और आप स्वयं अधर्म के एक एक आपाद मस्तक अधर्म पाप भरा हुआ है, नाश हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, सीता रूपी महानागिन को लाकर गले में मत डालिए, सत्यानाश हो जाएगा, वंशनाश हो जाएगा, जथा शीघ्र उनको वापस दे करके क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो रावण ने सभी मंत्री से सुना, विभीषण से सुना, सुन करके मूड ऑफ हो गया, बोला क्या करूँ मेरे भैया मुझे इस बात कह रहा है, तो मीटिंग खत्म कर दे, बोलो कल देखेंगे, चले गए। दूसरे दिन फिर सीरियस मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया, वही बात हुआ, सारे मंत्रियों ने आपने इस प्रकार सलाह दी, विभीषण उठकर फिर समझाया, मैं फिर भी कह रहा हूँ भाई भैया मेरा उनको वापस कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो रावण ने उठकर बोला विभीषण तू इतने डर क्यों रहा है, मैं राक्षस हूं, ये एक मनुष्य है, मनुष्य का राक्षस का तो कोई समान ही नहीं, इतने तुच्छ है, भेड़ बकरी के नीचे हम देखते हैं उनको, उनके अंदर बलता का तो होता है क्या, तो मुझे आकर डराता है तूने इतना, मैं अकेला ये बंदर है मनुष्य है, उन लोग को कोई डरना उनसे, उनको मुझे डराता है आकर के, क्यों इतना डराता है। इस बात को सुनकर दूसरे और कुछ मंत्री खड़े होकर बोलने लगे, विभीषण को डांट दिया चुप करो भाई साहब सुन, लेकिन इतना नहीं माना, स्वयं इंद्रजीत खड़े होकर बोलने लगे, हाँ इतने महावीर है आपने देखा ऐसे बोलने लगे। तो विभीषण ने इंद्रजीत को डांटे, बोले इंद्रजीत तू क्या गर्व बड़ अहंकार दिखा रहा है, इंद्र को जीत लिया करके सोचता है कि सब कुछ जीत लेगा, तो जानता नहीं राम कौन है, राम का महिमा गान करने लगे। तो इंद्रजीत ने उल्टा करके उनके अपमान सहने खूब गाली दिया चाचा जी को, जैसे दुर्योधन ने विदुर को अपमानित किया था, इंद्रजीत ने भरी सभा में विभीषण को इस प्रकार अपमानित किया। और इस अपमान के सुन करके रावण खड़े होकर वाह वाह बेटा मेरा इंद्रजीत बढ़िया है, ये मेरे शत्रु के सपोर्ट करने वाला तू, कलंक करके एक लात मारा उठा करके विभीषण, गेट आउट, शत्रु के आकर बड़ाई करता मेरे सामने, यू डोंट नो हुआ मैं, लात मारा उठा कर विभीषण निकला, भाई साहब ठीक है, आपने जो 4 समर्पित मंत्री थे उनके प्रति, ये महामंत्री थे उनके भाई थे, उनको साथ में लेकर के चला आया, रावण ने उनको देश से निकाल दिया, घर भी नहीं गया, वापस जा करके सीधा गया रावण के भाई लगेंगे कुबेर जी के पास, कुबेर जी सज्जन व्यक्ति थे, रावण के भाई लगते थे, कुबेर जी के पास आकर देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, मैं क्या करूँ, घुसने इंद्र घर से निकाल दिए सब। तो कुबेर जी के पास तभी शंकर जी बैठे थे, कुबेर और शंकर दोनों मित्र हैं, उन्होंने शंकर जी बोले अरे चिंता क्या है, जाओ ना जिनके वाले राम के पास चला जाओ, राम क्या मुझे स्वीकार करेंगे, राम तो हमारे शत्रु है वो हमारे एनिमी है, हमारे से लड़ाई करने के लिए, मैं तो रावण के भाई हूँ, मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। बोले तो राम को अब तक नहीं पहचाना, तो जाओ तो सही,
ना मैं असुर देख करके मैं कैसे जाऊं? बोले अपना गाड़ी में जाओ, अपनी फ्लाइट लेकर जाओ। उनका अपना प्राइवेट फ्लाइट था, प्राइवेट विमान था, वो लेकर जाओ। बोले उसमें लंका के नंबर प्लेट लगा हुआ है, वो तो देख लेंगे। बोले फिर भी आप चिंता मत कर, जाओ तो सही। भगवान शंकर की सलाह से विभीषण कुमार अपने परिकर को साथ लेकर अपने गाड़ी लेकर के चले। जब आ करके जहां आप लोग गए थे आज कोदंड राम मंदिर, वहां पर उन्होंने लैंडिंग किए, वहां राम बैठे थे। क्योंकि ब्रिज 80 माइल्स वाइड में बन रहा था, सत्यकुराय से लेकर के यहाँ तक इतने चौड़ा, वो यहाँ आकर बैठे थे। तो विभीषण आकर के जब आकाश मार्ग से लैंडिंग के, सारे जो BSF थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थे, सब वानर सेना, वो सब टारगेट किए देखने लगे। बोले उड़ा देंगे उनको, वहीं पर उड़ा देंगे। लेकिन गड़बड़ी ही था, राम 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 शब्द उच्चारण होता था। भगवान राम सबसे पहले सबको घोषणा कर चुके थे, जो कोई मेरा नाम लेता है तो उसको कोई हस्तक्षेप नहीं था, उनको सीधा हमारे पास लेकर आना, हम विचार करेंगे। बोले गड़बड़, प्रभु के आदेश है, उसको मार कैसे सकते हैं। तुरंत कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, मीटिंग करने से बड़े बड़े समिट जनरल के साथ क्या किया जाए। सुग्रीव आदि, अंगद आदि बड़े बड़े बोले ये तो है, तो बिल्कुल लंका का प्लेट लगा है, नंबर प्लेट है, शत्रुपक्ष का, लंका श्रीलंका का है नंबर, और है ये देखने से बिल्कुल डिजाइन, जो वो गाड़ी जो इन्हीं का ही मैन्युफैक्चर है, वही शत्रुपक्ष के है। और असुर लोग तो बड़े मायावी होते, किस प्रकार क्या करके आएंगे, छल करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो राम नाम ले रहा है, लैंडिंग किए, बोले देखो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा प्रकार अरेस्ट, नज़रबंदी किए, नज़रबंदी जानते ना, एक प्रकार अरेस्ट होता है, नज़रबंदी कहते हैं इसको, रस्सी नहीं बांधेंगे, चेन नहीं लगाएंगे, लेकिन चारों तरफ नज़र में रखें, क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ बोलता है, देखते रहें, कुछ गड़बड़ किया एक्शन लेंगे, हमेशा नज़र निगाह में रखते हैं, नज़रबंदी करके लाए हैं। भगवान तो कहते मेरे पास लेकर, भगवान बैठे थे उनके पास लेकर के आए, मिशन ने आया। यही श्री राम है, जैसे बताया कि श्री राम के, श्री राम कहकर पाही माम कहकर धाम से दंडवत प्रणाम किया मिशन। पहले बार वो भी देखा, पहले बार वो भी देखे, अभी ना जान ना पहचान कुछ नहीं है। प्रभु ने केवल देखे कि उन्होंने पाही माम करके पैर में गिर गया, भगवान राम तुरंत अपने आसन से उठ गए, उठ करके जा करके स्वयं अपने श्रीहस्त कमल से उठा करके छाती में लिपटा लिए, घंटों रोने लगे, वो भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। सभी जनरल खड़े होकर देख रहे कि क्या है अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित क्या, 100% गारंटेड है तो असुर है, रावण के भाई लगता है। तो गाड़ी में नंबर प्लेट लंका का लगा हुआ, वो जो आए उनके साथ में सारे राक्षस है, उनके सर्वेंट जितने आए, फिर भी सब जानते हुए भी इस व्यक्ति को कलिंग निपटा करके आलिंगन किए। आलिंगन करने के बाद विभीषण ने परिचय दिया कि मैं रावण के भ्राता विभीषण हूँ, कुमार विभीषण। बस इतना ही कहना था और कुछ कहने चांस नहीं दिए भगवान ने, तुरंत घोषणा किए सभी के सामने, उनके पूरा पार्टी बैठा घोषणा के, विभीषण आज से नहीं इसी क्षण से मैं तुझे लंका के राजा घोषणा कर रहा हूं, बना रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं, विभीषण लाओ अभिषेक करो इमीडिएट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर द किंग ऑफ लंका, लंका के राजा घोषणा कर दिए। अंगद ने उठाया, बोला एक्सक्यूज मी सर, क्या है ना सर, मेरा ये डाउट है, क्या डाउट है ना, आपने तो विभीषण को राजपद में पोस्टिंग तो कर दिया ना, तो लेकिन पोस्ट वैकेंसी नहीं है। अरे किसी को अपॉइंटमेंट करेंगे पोस्ट वैकेंट होगा तभी ना। बोले क्या, बोले रावण मरा थोड़ी है, ना रिजाइन किया ना रिटायर्ड किया, अब तो बन बैठा राजा, आसन खाली नहीं है, सीट खाली नहीं, तो अब अपॉइंटमेंट कैसे किए। मेरा डाउट क्लियर करे साहब, भगवान राम हंसने के बोले अच्छा ये संदेह है ना। बोले मैं ठीक मानता हूँ वैकेंसी नहीं, मैं अपॉइंटमेंट कर दिया तो वैकेंसी कर देंगे, वैकेंट कर दूंगा, खाली कर दूंगा सीट, उनको बैठाऊंगा ना। एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम देखे ये उनका भाई साहब है, रावण का भाई है, 100% राक्षस है, भाई भाई है, एक ही परिवार का, आया आकर के एक दंडवत मारा, राजपद मिल गया जस्ट बाई वन प्रणाम। एक बार प्रणाम में जब किंग पोस्ट मिल गया तो आप क्या सोचते हैं रावण इतने मूर्ख है, उनका सीआईडी घूमते होंगे अभी इधर, वो जाके खबर देंगे उनको कि राम इतने उदार है, जस्ट वन टाइम वो भी सेंसेस कर दो, कंफर्म किंग पोस्ट राजपद पक्का हो जाएगा, जान पहचान जस्ट एक प्रणाम। अगर उनको पता चला वे आज दोपहर में काल सुबह आकर हुआ कि प्रणाम ठोक दे तो डायरेक्ट फ्लैट लेकर आएगा, आकर उत्तर सीधा है कि प्रणाम मार दे, राम राम करके आके प्रणाम कर दे, क्या फर्क पड़ता है, राम राम करने से आप किसी को तो छोड़ेंगे, बोलेंगे लेकर आओ, वो आएगा आके दंडवत मार देगा, तब क्या करेंगे, अब वो तो उसको तो खाली नहीं कर सकते पोस्ट, फिर उसको अपॉइंटमेंट क्या करेंगे, वचन के दे सकते होगा, जो आके प्रणाम कर दे तो उसको तो राजपद से हटा तो नहीं सकते हैं, तो विभीषण को लंका राजा कैसे करेंगे, बताए मेरा शंका समाधान कीजिए। भगवान राम सुनकर फिर हंसने लगे, फिर भी आपको मैंने संदेह ना क्या ना, अगर रावण भी आज शाम का काल भी आकर मुझे इसी प्रकार मेरे शरण में आता है तो मैं रावण को भी आलिंगन करूंगा, करके बोलूंगा रावण तेरा सीट तुझे राजा में बनाऊंगा अवश्य, लेकिन लंका का नहीं, अभी तो मेरा 14 साल पूरा हो रहा है, अयोध्या मेरा मिलने वाला है, अयोध्या के राजा बना दूंगा, राजा उनको ही बना दूंगा, उनको तो लंका को पोस्टिंग कर चुका हूं, उनको यहां पोस्ट दे दूंगा। ऐसा वाक्य सुन करके सारे जनरल्स खड़े होकर बोले सर आप सुनते नहीं, हास्ट डिसीजन लेते हैं, सलाह नहीं लेते हैं, पता नहीं ये क्या निकलेगा, आज तो से राम राम कर दंडवत कर दिया, इतने हाथों हाथ काम निकाल लिया, ये बड़े चतुर होते हैं, डाउट करने लगे तो भगवान ने तभी अपने भगवत्ता घोषणा किए थे। एक बार कभी कभी भगवान अपने मर्यादा हमेशा पालन करते हैं, तभी उन्होंने मर्यादा से बाहर आकर बोले थे ये बात, सबका मन में जो शंका था घोषणा करके भगवान वहीं पर बोले, बोले आप लोग सब सोचते क्या है, आप लोग सोचते हैं कि मैं आप लोग का सहायता लेकर के ब्रिज बनाया, आपके सहायता से मैं युद्ध लड़ूंगा, आपके सहायता से रावण विजय करूंगा, सीता रक्षा करूंगा, इसके मिशन लेकर आप लोग को भरोसा में सुना ना, आप कर तो रहे मानेंगे, आप कर ही रहे हैं बात, बोले ये आपका भावना गलत है, है? गलत है, इतने दिन से ब्रिज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लड़ाई सब प्लानिंग चल रहा है सब बेकार, किसी का सहायता मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं चाहूं आज अभी इसी क्षण रावण सीता को लाकर हाथ जोड़ के मुझे समर्पण करके चला जाएगा, कुछ आवश्यकता नहीं है आपका, कोई जरूरत नहीं, सबका आंख फाड़ कर देखने लगे, तब जब ऐसे हो सकता तो वही सब लेटरा क्यों सब सही है, क्यों भाई है? इतने दिन का लंबा प्रोजेक्ट ब्रिज लाओ बनाओ लड़ाई झगड़ा, भाई आप तो इसी क्षण कर सकते, किसी ने ये शंका, बोले मैं इसीलिए ये सब कर रहा हूं क्योंकि इससे आप लोग का हित मंगल साधन होगा, मेरा तो क्या, आप लोग मेरे लिए मेरा काम में भाग लेंगे तो आप लोग का उद्धार होगा, आपका मंगल हो जाएगा, इसीलिए मैं प्रोजेक्ट लिया हूं, मेरा क्या होगा। ये बात कह करके भगवान ने कहे, बोले फिर कान खोल करके सुन लो, ये विभीषण को शरणागत देख करके उनको शरण दे करके मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। रामायण में ये बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, सकृत एव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते, सकृत मतलब एक बार भी, एव मतलब निश्चित, सकृत एव प्रपन्नायम एक बार शरणागति के भाव लेकर के एक बार को ही तब अस्मि इति जाचते, हे प्रभु मैं आपका हूं, हृदय खोल करके उर्ध्वभाव होकर कोई वो स्वीकार करके पुकार करके बोल दे हे प्रभु हे राम मैं तो आपका हूं आप मेरे हैं, बस वन टाइम केवल एक बार कोई सकृतेव प्रपन्नायम तब अस्मि इति जाचते, ये तो एक बार कोई कह देगा तो फिर आप क्या करेंगे, बोल मैं क्या करूंगा, अभयम ददामि तस्मै सर्वदा एतद् व्रतं मम, बोले मैं भाव लेता हूं, व्रत प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करता हूं, वो तो एक बार कह देगा प्रभु मैं आपका हूं, उसी समय से सदा सर्वदा के लिए कितने जीवन उनका रहेगा, इटरनली सर्वदा पर्यंत हर प्रकार के भय से उनको मुक्त कर दूंगा, ये मेरे व्रत है। वो एक बार मैं तो निरंतर सर्वदा सब प्रकार भय से उनको मुक्त कर दूंगा, ये मेरा व्रत है। तो मुझे शरण ग्रहण किया तो उनको हर भय कैसे, भगवान कैसे उद्घोष था। तो ऐसे कोदंड राम में विभीषण को राजा घोषणा करके उनको शरण ग्रहण करके सर्व शरण्यम शरण्यम भगवान आपने शरणागति को महिमा को दिखाए और उनको राजा बनाए और उनको स्वीकार किए, शरणागत को स्वीकार किए। इस प्रकार के करके ये जो उसके आगे क्षेत्र में जो धनुष्कोटि कहे थे गए थे, धनुष्कोटि कहते हैं कि जब भगवान राम युद्ध हो गया, रावण के बद्ध हो चुका है, बद्ध होने के बाद में अभी विभीषण को तो एडवांस राजा बना दिए थे ऑलरेडी, रावण का डेड बॉडी पड़ा था, मंदोदरी अदा करके खूब शोक कर रहे थे, गाली दे रहे थे उनको, तेरे वजह से सारे मर्डर हो गया, सब मरे, ये की गाली दे रहे थे, जो भी कर रहे थे। तो भगवान राम लक्ष्मण बैठे थे, वक्ष बैठे थे, हनुमान को बोले हनुमान जाओ सीता को बोल दो कि सीन ऑफ हो चुका है, अभी आ सकती हो। तो हनुमान जा करके अशोक वाटिका में सीता जी को खबर दिए कि प्रभु ने रावण के वध कर चुके हैं, रावण वंश से समूल नाश हो चुका है, अब आप भगवान को मिलने के लिए जा सकती हो, अनुमति जा सकती। लगभग 10 महीने अलग से रहने के बाद दुख में तड़पते तड़पते हर पल विनिद्र रजनी, कोई रात नहीं था जिस एक क्षण के लिए सीता जी की नींद आ जाए, कई दिन नहीं था जिसमें कोई भूख आ जाए कि प्यास आ जाए, बिना खाए बिना सोए बिना पिए इस प्रकार के तड़प तड़प करके 10 महीना बिताई थी इस अशोक वाटिका में। इतने दुख के बाद आज हनुमान के इस संवाद पा करके सीता जी ने पहली बार इतने खुश हो गई, खुशी के मारे आंसू निकला, अब ये दुख के मन था, खुशी की इतने खुश हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई, खड़ी हो गई, मेरे प्रभु आ चुके हैं, अब सब काम हो चुका है, मुझे उद्धार करने के लिए रास्ता खुल चुका है, अब मुझे स्वीकार करेंगे, इतने खुश हो गई। तो उनके खुशी के देख कर खुशी के मारे हनुमान जी आए, बोले तुम खबर देकर आ गया, आ गया खबर देख करके भगवान राम विभीषण को, विभीषण जाओ उनको बोलो ऐसे आना नहीं चाहिए, उनको बोलो अच्छा से स्नान टान करके पूर्ण पवित्र हो करके अच्छा से वस्त्र सब पवित्र वस्त्र आदि धारण करके आए, ऐसे नहीं महिला कुचला किसी भी जंगल में बैठी आ जाए, ऐसे नहीं, मैं राजा हूँ, राज पुरुष के साथ राजकुमार के साथ इस प्रकार आना चाहिए, इस प्रकार का इस शान में आना चाहिए। तो विभीषण ने जाकर के दिया उनके सब साड़ी अलंकार, पालकी भेजा था, पालकी में बैठ कर ला रहा था, जिसे दूर से देखे भगवान ने रोके, बोले बोलो उनको पालकी में क्यों चढ़ कर आ रही है, पैदल में आना चाहिए, मैं पैदल में आई वो पालकी में आ रही। ये बात सुनकर के सारे देवता लोग भी उपस्थित थे, देवता ऋषि पंडित सब मानव सब कितने लोग से भीड़ थे, सभी को उत्पटा लगा, ये प्रभु ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, इतने दिन के बाद इसको खो गया था करके कितने दुख दुख रोते रोते उनको आए उद्धार किए, आज वो पालकी में बैठे आई थी, ये खाई पी नहीं इतना दिन से, चढ़ के गाड़ी में आए तो गाड़ी से उतार देते हैं, उतार दे गाड़ी से, बोले नहीं पैदल में आना चाहिए। सीता जी उतर गई पालकी से, आई सबका मन गंभीर हो गया, बोले कुछ गड़बड़ी होगा शायद, आई पूरे देवी देवता और सारे भक्तगण मनुष्य बैठे थे, विभीषण आदि भगवान बैठे हैं, पिताजी सामने आए, तो भगवान की मुखचंद्र को देख करके इतने प्रसन्न हो गई, इतने खुश हो, इतने दिन के बाद स्वामी के मुख देखा उन्होंने, तो भगवान राम ने नीरवता भंग करके बोले, बोले हे सीते मैं युद्ध इसलिए किया कि युद्ध करना मेरे कर्तव्य था, देवताओं को वचन दिया था रावण को मारने के लिए इसलिए मैं युद्ध किया, आपको इसलिए उद्धार किया क्योंकि आप दुखी थे, रावण तर बंदी थे, इसलिए मैं उद्धार किया। ना तो मेरे किसी के प्रति आसक्ति है, ना आपके प्रति भी आसक्ति है, केवल एक ही चीज के प्रति आसक्ति है, केवल धर्म आचरण के लिए। धर्म के प्रति मैं आसक्त हूं, और सही धर्म के अनुसार राजधर्म कहता है, कोई राजपत्नी लगभग एक साल किसी दूसरे के घर में रहे, मैं कैसे उनको स्वीकार कर सकता हूं, लोग मुझे किस चक्र से देखेंगे। तो अभी आप मुक्त हो, आप स्वेच्छा से कहीं जा सकते। बाप रे बाप, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूं, कह दी। ये बात को सुन करके सीता जी की लगा कि जैसे आकाश सर पर टूट पड़ा, पैर के नीचे से धरती खिसक गया, धूम से रोती रोती मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतने दिन के बाद खुशी के मारे रो रो करके भगवान के मुख कमल को निहार रहा था, अब उनसे इसे कठोर वचन। जितने बैठे थे सब नर नारी सब रो पड़े, सपक सपक करके सब रो पड़े, केवल एक ही व्यक्ति भगवान राम के अलावा सब रो रहे थे, लक्ष्मण पर्यंत रो रहे थे। इतने निष्ठुर क्यों, क्या हो गया उनका, कौन कहेगा उनको क्या हो गया। तो ना यही नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वाह, रो रो करके सीता जी मूर्छित हो गई। अभी तक उनके जीवन में जितना दुख आया था, सारे दुख तो भगवान राम के आशा से पी गई थी, सहन कर गई थी, लेकिन आज भगवान राम सम्मुख बैठ करके उनके मुख से ये वचन, असह्य है। तो सीता जी ने रो रो करके बोले, ठीक है प्रभु, तो मेरे तो और कोई गति नहीं है, ठीक है, मैं फिर अग्नि प्रवेश कर जाती हूँ, जीवन में मूल्य कुछ नहीं, देवर लक्ष्मण मुझे सहायता करो, इस दशा में कुछ काष्ठ ला कर अग्नि संचार करो। लक्ष्मण तो रो रहे थे, भगवान की ओर देख रहे थे, क्या हो गया आपका, व्हाट आर यू डूइंग। भगवान देखे लक्ष्मण को, लक्ष्मण लकड़ी ला कर अग्नि संजोग कर, है आप भी अप्रूव कर देना, यस गो अहेड, आप करेंगे। यंत्र चालित के भांति कष्ट ला करके अग्नि संजोग किया गया, सभी के सामने पब्लिकली सब दे रहे थे। जिंदा ऐसी दुखिनी स्त्री हु हु करके जलती हुई आग में कैसी चली जाए, कि अब थोड़ा मन में सोचो, कभी देखे तो नहीं होंगे, देखेंगे भी नहीं ऐसा, हम तो देखे बोले डेड बॉडी मुर्दी में जलाता है तब भी हमको डर लगता है, जिंदा शरीर बात करते करते चिता में कैसे प्रवेश कर जाए। लेकिन सभी के भरी सभा के बीच में सीता जी ने अग्नि को प्रणाम किया, परिक्रमा किया, भगवान राम को दूर से प्रणाम किया, भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करके हाथ जोड़ के, सभी दिग्पाल को साखी रख करके, सभी देवदावता उपस्थित सारे भक्त को साखी रख करके, पति के श्री चरण को दूर से मनन से नमस्कार करके साखी रख करके बोला, अगर मैंने जब से राम से अलग हुआ हूँ एक क्षण भी अगर कोई दूसरे पुरुष के मन में, बुद्धि में, चित्त में भी सोचा हूँ कि उनके बारे में विचार किया हूँ, कि बोला हूँ, कुछ भी किया हूँ, तब हे अग्निदेव मुझे तस्मा जला कर भस्मसात कर दो, अगर एक क्षण के मैं दूसरे को चिंतन नहीं किया हूँ। प्रवेश कर गई, कह करके प्रवेश कर गई आग में। आग में प्रवेश करते ही आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगा, पुष्पवृष्टि होने लगा, तुरंत अग्निदेव प्रकट हो गए सीता जी को लेकर भगवान के सामने, हाथ जोड़ कर, प्रभु लीजिए कुछ नहीं, ये देखिए अग्नि क्या बिगाड़ सकता हूँ, मैं तो उनको रखी, मैं रखा था उनको, ये सीता। सारे देवता ने पुष्प जाकर हाथ जोड़ के खड़े, नहीं है अब क्या था, तब भगवान ने स्वीकार किए, तब भगवान ने स्वीकार किए उनको। स्वीकार करके जब लेकर के आए, इस घटना को देखने के बाद लंका में बाकी जितने वानर सेना विभीषण आदि सब उनके साथ में गए, गाड़ी में लोड हो गए, पुष्प विमान में लोड हो गए सब। पुष्प विमान के ऐसे गाड़ी था जिसमें सीट का कोई कमी नहीं होता था, पीछे बैठो आगे बैठो ऐसे नहीं, अब जितने आदमी आए बिना रजिस्ट्रेशन में, बिना रिजर्वेशन में बढ़ जाएगा, घट जाए कोई जरूरत नहीं जमा करना, जितने आए हो वो एक्सपांड हो जाएगा अपने आप। बैठ करके आए, बोलते आ करके इस रामेश्वर आए, बोले जहाँ इतने दिन बैठ करके ये सब काम किए थे, इतने प्रोजेक्ट किए थे, उनको दिखाना चाहते थे भगवान कि देखो सीते तेरे लिए मैं क्या क्या किया हूँ। यहाँ पर आ करके मैं सज्जा में घास की सज्जा पर सोया था, अनशन किया था खाए पिए बिना, तुमसे तुम ही दुखी थे। यहाँ पर मैंने ये हनुमान को भेजा था ये करने के लिए, यहाँ पर इतने बड़े ब्रिज बनाया था, यहाँ पर ऐसे किया था, स्थान को दिखाने के लिए आए। आ करके वहीं उतरे थे जहाँ धनुषकुटी आज हम गए थे ना गाड़ी में, समुद्र दोनों समुद्र के बीच में। लगभग आज से कुछ 50-60 साल पहले भी वहाँ एक बहुत बड़ा सिटी था, टाउन था। ऐसे कहा कि 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 में एक रेलवे लाइन वहाँ तक लेकर गया था। भारतवर्ष का दक्षिण दिशा पर सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन वो था जिनका नाम था रामनद रेलवे स्टेशन। आज भी शायद आप उठकर देखे होंगे, पुराना रेलवे लाइन अभी पड़ा होगा मिट्टी के नीचे, कुछ घर बार ऐसे ही पड़ा होगा। लेकिन 1964 में ऐसे एक भयानक साइक्लोन हुआ था इस एरिया में, वो साइक्लोन में पूरे सिटी ही समुद्र के अंदर चला गया, पूरा सिटी चला गया, ट्रेन चला गया, पूरा सिटी ट्रेन लाइन सब कुछ स्टेशन पर सब चला गया, और पानी आ गया। पहले पानी नहीं था, सिटी था, यहाँ तक ट्रेन जाता था, गाड़ी जाने के तो जब ट्रेन जा रहा है तो ऐसे ही गाड़ी पे तो ऐसे लोग जाते थे। लेकिन वो 1964 के बाद वो समुद्र हो गया, सब सलील समाधि हो गया इस साइक्लोन के बाद। तो लेकिन जब भगवान राम आए थे वहाँ उतरे थे, तो विभीषण ने साथ में आकर भगवान के ब्रिज को देख करके आकर के भगवान प्रार्थना किया था, बोला हे प्रभु राम, आपने जुग जुग के लिए आपकी कीर्ति रहेगा कि समुद्र के ऊपर 800 मील तक अपने ब्रिज बनाकर सेतु बनाकर गए, इतने सुदृढ़ ब्रिज था, सेतु था। लेकिन एक आपके चरणों में प्रार्थना है, अगर आप तो रावण को जीत कर बंध करके सब करके आ गए, मुझे राजा करके आ गए, लेकिन अगर आप रोड छोड़ कर चले जाएंगे, ब्रिज छोड़ कर चले जाएंगे हाईवे, तो आगे चल करके कोई बड़े बड़े उदंडी राजा राक्षस कोई भी उनको रास्ता खुला मिला है, सीधा आकर चढ़ाव करेगा, ये करेगा, सब गड़बड़ करेगा, प्लीज न तो फिर आप क्या चाहते हो विभीषण? न मैं चाहता हूँ, आपने ब्रिज बनाए थे, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपने उसे बिगाड़ कर जाइए, उसको ख़त्म कर दीजिए, नाव रहे तो समुद्र के बीच में कोई आ नहीं सकते, आप ही थे आए थे, बाकी कोई ना आए इसे। तो विभीषण के अनुरोध को सुन करके भगवान ने आपने एक कोदंड निकाले, कोदंड को उठा करके धनुष को निकाल कर धनुष के एक नोक से 3 बार ब्रिज को काट दिए, खंड खंड हो गया, त्रिखंड होकर ब्रिज पानी में डूब गया। जो पानी के ऊपर तैरा था 80 miles wide, 800 miles long ब्रिज को 3 टुकड़ा करके समुद्र में डुबा दिए। ये धनुष के नोक कर काटे थे, इसलिए जगह का नाम पड़ा धनुषकोटी, धनुष के द्वारा काट दिए थे उसको, धनुष का अग्रभाग नोक में, इसे धनुषकोटी पड़ा। जब सबके देखते देखते इतने भीषण, इतने विशाल 80 माइल चौड़ा लंबा ब्रिज तुरंत समुद्र कथा जल में डूब गया, नीचे चला गया, तो सब हाय हाय सभी इतने बड़ा था, इतने आए गए, सब पानी में चला गया। कहें तो भगवान राम बोले वहीं स्नान करते हैं। बोले आप स्नान करेंगे? ब्रह्मांड के सब तीर्थ को आह्वान किए, सारे तीर्थ आकर के भगवान की इच्छा के अनुसार वहीं प्रकट हुए। तो हम भगवान भी स्नान किए, सारे पूरे पार्टी ग्रुप लोग सभी स्नान किए, तो धनुषकोटी महातीर्थ घोषणा हो गया है। उस दिन से धनुषकोटी महातीर्थ हो गया था, जहाँ भगवान ने धनुष काटे थे इस प्रकार से। जहाँ पर बंगोपसागर और भारत महासागर दोनों इस धनुष के आकार में मिल रहे हैं, धनुषकोटी। भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर रामेश्वर में आकर के धनुषकोटी में स्नान किए थे, धनुषकोटी तीर्थ में। तो इस प्रकार धनुषकोटी में विभीषण को शरण दिला करके और धनुष के नोक पर इस ब्रिज को काट करके धनुषकोटी के तीर्थ बना करके भगवान राम आए। आ करके जब यहाँ पहुँचे तब सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण उनको विशेष स्वागत किए, रावण को मारने के बाद सारे देव कार्य सिद्धि किए सब किए। लेकिन मैं जैसे बता रहा था भगवान बोले लेकिन सही तो हुआ, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था, ब्रह्महत्या हो गया। ब्रह्महत्या का तो आपको दोष क्या, लेकिन मुझे दोष नहीं लगता, लेकिन मुझे बहाना लेकर लोग ऐसा करेंगे आगे चल करके, इसलिए मर्यादा रखने के लिए मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। अगस्त ऋषि को पूछे भगवान राम ने, क्या प्रायश्चित करूं? बोले इसे तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो रावण शंकर भगवान के भक्त था तो शंकर को स्थापना करके पूजा कर दीजिए तीर्थ में, तो हो जाएगा काम। तो इसलिए भगवान कैलाश से हनुमान को भेज करके शिवलिंग मंगाए थे, वो आने में लेट हुआ, तो इसमें कथा बताया था इस प्रकार ऐसे हुआ था, रामेश्वर तीर्थ हुआ। तो इस प्रकार भगवान राम के लीला से इस क्षेत्र के एक एक इंच पृष्ठ है अंकित है रामलीला के द्वारा। तो इस रामलीला के क्षेत्र में लगभग आप अभी दो रात बिताने जा रहे हैं, आपके दक्षिण भारत यात्रा का और केवल दो रात बाकी रह गया मेरे ख्याल में, टू नाइट मोर। तो पता नहीं आप लोग को इस यात्रा के कैसा टेस्ट आया, बहुत प्रकार तकलीफ तो हुआ ही होगा और आगे दो रात और भी होगा, क्या अच्छा होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग ने जिस दिन यात्रा के बारे में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, फीस जमा किए होंगे, उसी दिन मन में सोचे होंगे कि कष्ट क्या होगा। थोड़ा बहुत जिसको पता होगा पहाड़ चढ़ना, पता नहीं इतने दूर जाना पड़े, 40 घंटा तो ट्रेन जानी, उसमें ठंडी फक के कारण कितने लेट और भी हो सकता है, जानबूझ करके कोई कष्ट उठाए कोई महान उद्देश्य के लिए, इसी का नाम तपस्या है, इसी को तपस्या कहते हैं। और ये यात्रा कोई साधारण टूर नहीं, इस नट से पिकनिक पार्टी, इसने टूर पार्टी, ये यात्रा एक भिन्न है। यद्यपि आप इसी स्थान को आकर देखें, क्योंकि इसमें विशेषता है भक्तों के साथ में आते हैं महाप्रभु के भक्तगण, ये बात कहते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरिब आमी प्रणयी भक्त संगे। जिस जिस स्थान पर महाप्रभु गौरांग ने भ्रमण किए हैं, वही वही स्थान को मैं भक्तों के साथ में जाकर उन दर्शन करूंगा, उसके बारे में सुनूंगा, उसका आस्वादन करूंगा। यही भक्ति का एक लक्षण है। नवधा भक्ति में जो नौ प्रकार भक्ति है, उसमें जो पदसेवन भक्ति है, उसी का अंग में ये यात्रा आता है, पदसेवा है। पदसेवा तो कहते हैं सब ट्रेन में फ्लाइट में आए, यहाँ भी पद में नहीं चलते सब, रिक्शा में ऑटो में कार में चलते हैं, थोड़ा बहुत पैर में चलना चाहिए, भले किसी में आए लेकिन पदसेवा के अंग के अधीन है ये यात्रा। इस यात्रा में यद्यपि हमारे शरीर के लिए आवश्यकता को जो जो आवश्यकता जितने हो सके मैनेजमेंट ने पूरा टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक आवश्यकता को केवल हम प्राधान्य दें तब यात्रा फिर प्रधान नहीं हो सकता। यात्रा का जो प्रधान होना चाहिए उद्देश्य, ऐसे तीर्थ का आस्वादन करना, तीर्थ आस्वादन करने का जो एकमात्र तरीका है, पश्यन्ति कर्ण चक्षुषा ना कि चर्म चक्षुषा। इस चर्म आंख में देख कर आए तो क्या देखेंगे हमने, जब सुनेंगे तब पता चलेगा व्हाट इट इज। तो इस प्रकार यद्यपि मैं मुझे आप लोग ने चुने कि चलो इस काम को संभालने के लिए, लेकिन मैं इसके लिए कतई योग्य नहीं हूँ, फिट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप हमारे कर्कश वाणी को सहन कर रहे हैं इतने दिन तक, सुनना तो नहीं चाह रहे हैं ये तो पता है मुझे, लेकिन फिर भी क्या करें आप क्या पैसा दे रखे हैं, थोड़ा बहुत बैठना तो पड़ेगा ही, तो इस कारण थोड़ा बैठ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बारम्बार धन्यवाद देता हूँ, आपकी सहनशीलता बहुत है, इतने भी सहन करके फिर भी आप बैठे रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा था इस क्षेत्र का लीला तो एक से एक बहुत थे, मैं तो कल भगवत लीला कहा, भगवान के भक्तों की लीला से तो और अधिक है, उससे कहना तो बहुत कुछ है लेकिन समय की बाधा है। अभी प्रभु जी ने मुझे बता रहे थे कि कल सुबह भी जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकलें, क्योंकि यहाँ से जो हम दूसरे हमारा कैंप है डेरा जहाँ पड़ेगा वह कन्याकुमारी है, यहाँ तो दो सागर के मिलन देखे संगम देखे, वहाँ तीन समुद्र के संगम देखेंगे, वहाँ बंगोप सागर तो है ही, उसके साथ साथ भारत महासागर भी होगा, उसके साथ अरबियान ओशन आकर जुड़ जाएगा, अरब सागर भी जुड़ जाएगा, तीन महासागर के मिलन, उसके कथा तो वहीं कहेंगे। ऐसे कहा गया कि इस क्षेत्र में इस रामेश्वर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो समुद्र खंड है लगभग 10,500 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, जिनमें सामुद्रिक द्रव्य बहुत प्राप्त होता है। इवन इस समुद्र के अंदर एक सी काव मिलते हैं, वो केवल इसी क्षेत्र में मिलता है। कई प्रकार सी ग्रास, कई प्रकार मेडिसिनल हर्ब्स, कई प्रकार 36 वैरायटी सब समुद्री द्रव्य इसी एरिया में प्राप्त होता है, इसलिए प्रोटेक्टेड एरिया है इस रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी तक, क्योंकि समुद्र के संगम ना तीन समुद्र का मिलन स्थल है, अलग अलग समुद्र का खनिज पदार्थ जो अपना प्रोडक्ट यही सब प्रोटेक्ट रहा है, तो इसलिए सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रखे हैं। इस 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, उसमें से जो रामेश्वर मंदिर में अब 2 दिन 2 रात बिताए। रामेश्वर मंदिर को कहा गया कि पूरे पृथ्वी में एक ऐसे एक मंदिर है जिनका जो हॉल वे सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट हॉल वे ऑफ द वर्ल्ड, जितने टेम्पल है लगभग 1.5 किलोमीटर उनका अंदर लंबाई है, 4,000 पिलार है उसमें पत्थर के, द्राविड कला से युक्त 4,000 प्रस्तर के पिलार है, 1.5 किलोमीटर लंबा है उनके हॉल वे। शायद को परिक्रमा किए भी नहीं होंगे आपने, थोड़ा बहुत नहाने निकले आधा चौथा किए होंगे, जो पूरा परिक्रमा करिए तो 3 किलोमीटर का परिक्रमा हो जाएगा उसका अंदर ही अंदर जाने और आने। इतने बड़े हल से इतने बड़े मंदिर बना गया, कई सदियों से कई राजा महाराज ने मिल मिल करके राम भक्त शिव भक्त मिल करके उसे बनाए। ये एक दक्षिण से जो हमारा भारतवर्ष में 4 धाम है, ये दक्षिण का धाम है भगवान राम के द्वारा उनकी स्मृति में रामेश्वरम, जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, पूर्व में जगन्नाथ और यहाँ रामनाथ। ये रामनाथ लिंगम रामेश्वर में जो दर्शन किए, जिसको भगवती सीता स्वयं अपने हाथ से स्थापना की थी, रेत में स्थापना की थी, रेत लेकर के, तो इतने मजबूत हो गए हनुमान जी भी उखाड़ ना सके, और घिस घास करके रेत इतने चकचक कर रहा है, बोलते स्फटिक लिंगम। स्फटिक जानते ना, इसे बालू में देखेंगे चिक 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 कर रहा है ना, जो थोड़ा चकचक कोई बालू उठा लो समुद्र के नदी के चिक चिक कर रहा है उसको स्फटिक बोलते हैं, तो इसी बालू से घिस घास करके स्फटिक लिंगम है वो छोटा सा, ये रामेश्वर। तो एक ज्योतिर्लिंग भी है वो, जो 12 ज्योतिर्लिंग होता है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है, और इसे धाम तो है ही है, और जो लिंग भगवान के द्वारा पूजित है, आज आपके आपके तथाकथित साल के न्यू ईयर का फर्स्ट डे में आप उनके दर्शन किए, उनको आपके मानसिक पूजा भी किए होंगे, उनके बारे में सुने, उनके तीर्थ में नहाए, उनके क्षेत्र में रहे, रात बिताए, तो इसलिए आज के दिन से आपके पूरा ये जो 2017 जो ईयर, इससे पूरा भगवान शंकर और राम की कृपा से सफल हो, उज्जवल हो, और उनके कृपा से पूरित हो। भगवान राम जैसे उदार है, आप आज के दिन कम से कम इसी धाम में यही शरणागति क्षेत्र में खड़े होकर के, मैं चाहता हूँ सभी आपने अपने दिल खोल करके, हृदय खोल करके, हाथ उठा करके, हे राम हम आपके हैं, ऐसे आपने मन से सब घोषणा कर दो, ताकि भगवान आपको भी सदा के लिए स्वीकार करके आपके समस्त भय से आपको आपको ही मुक्त कर दे। व्रतधारी राम के व्रत हैं तो भी कर लेंगे, नहीं करेंगे तो उनके भक्त श्रेष्ठ ईश्वर रामेश्वर बैठे, बोले मैं क्यों छोड़ूंगा, आप ऊपर से करेंगे मैं नीचे से करूंगा, दोनों तरफ से भिड़ जाएंगे, भक्त और भगवान के बीच हम आ जाएंगे, फिर डर किसका है ना। नहीं तो इसलिए आज के इस शुभ दिन में, शुभ क्षेत्र में, शुभ तिथि में, शुभ मेला में, शुभ भक्त समागम में सबसे शुभ भगवत नाम कीर्तन हो जाए। श्री राम जय राम।